आगे सबक देखिए भाई, وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا لِمَا قُلْنَا وَكَذَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لِمَا نُبَيِّنُ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتَيْهِ إِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَامَعَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَعْتِقِ الْأُخْرَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ تَعْتِقُ। भाई गुज़श्ता सबक में बाबु इत्क अहदिल अब्देन हमने शुरू किया था। साहिबे हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक शख्स के तीन गुलाम हैं और उन तीन में से दो गुलाम उसके पास आए और आका ने कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, फिर इन दो में से एक तो यहीं पर आका के पास रहा और एक चला गया और फिर वो तीसरा गुलाम आया, आका ने फिर दोबारा कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, और फिर आका बयान से पहले ही उसका इंतकाल हो गया। तो इस सूरत में हमारे अइमा फरमाते हैं कि वो शख्स जिस पर आका ने ईजाब को लौटाया, यानी वो जो साबित था जो यहीं पर रहा, तो उसके चार में से तीन हिस्से आजाद हो जाएंगे और एक हिस्से के अंदर वो सई करेगा और पैसे कमा कर लाएगा और वारिसों को अदा करेगा। जबकि जो एक खारिज था और वो जो एक आखिर में आया यानी वो जो दाखिल था, तो खारिज और दाखिल दोनों में से निसफ निसफ हिस्सा आजाद होगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो जो दाखिल है उसका निसफ हिस्सा आजाद नहीं होगा बल्कि उसका रुबो हिस्सा आजाद होगा। और फिर उसकी दलील जिक्र फरमाई साहिबे हिदाया ने, वजह यह कि जब पहले दो गुलाम आए और आका ने कहा कि तुम दोनों में से एक आजाद है, तो इस एताके रकबा को दोनों में तकसीम कर दिया जाएगा, ये दोनों में फैल जाएगी, तो निसफ हिस्सा जो है उस खारिज का आजाद हुआ और निसफ हिस्सा साबित का आजाद हो गया। फिर उसके बाद जब दाखिल भी आ गया, अब साबित और दाखिल से आका ने कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तो इस सूरत में अब फिर ये इताके रकबा दोनों के अंदर तकसीम होगा। तो निसफ तो दाखिल के हिस्से में आया तो दाखिल भी निसफ आजाद हो गया और निसफ इताक जो है वो साबित के हिस्से में आया और साबित के दो हिस्से हैं। ए निसफ के अंदर पहले ही इताक आ चुका है और निसफ के अंदर अभी भी रिक मौजूद है, तो ये जो निसफ इसके हिस्से में आया ये साबित के दोनों हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो इस निसफ के दो हिस्से किए तो दो रुबो बन गए, एक रुबो जो है वो तो उस हिस्से में आ गया जो पहले से ही आजादी का मुस्तहिक हो चुका है, तो वो रुबो तो लग चला गया क्योंकि जो हिस्सा आजाद हो चुका उसे दोबारा आजाद नहीं किया जा सकता, और वो रुबो जो गुलाम हिस्से में आया तो उस निसफ का निसफ यानी रुबो आजाद हो गया। तो लिहाजा साबित के चार में से तीन हिस्से आजाद हो गए और खारिज और दाखिल का निसफ निसफ हिस्सा आजाद हुआ। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो जो दाखिल है उसका भी रुबो हिस्सा आजाद होगा, वजह यह कि ये ईजाबे सानी की वजह से जब साबित का रुबो आजाद हुआ है तो दाखिल का भी रुबो ही आजाद होगा। जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि साबित का तो निसफ पहले ही आजादी का मुस्तहिक हो चुका है, तो उसके अंदर जब हमने उस निसफ इताक को दोबारा तकसीम किया तो निसफ लग चला गया और निसफ मजीद आजाद हो गया भाई। और फिर आगे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं कि अगर यही बात आका ने मरजुल मौत में कही तो इस सूरत में सुलुस को भी इसी तरीके पर तकसीम किया जाएगा। चुनांचे हर गुलाम के चार हिस्से करेंगे इब्तिदाअन, क्योंकि हमें तीन रुबो चाहिए साबित के अंदर, तो उसके अंदर चार रुबो बनाने पड़े तो बाकी दोनों गुलामों में भी रुबो बना लेंगे ताकि हिसाब एक जैसा रहे। तो लिहाजा साबित के जब चार में से तीन हिस्से आजाद हुए और वो जो दाखिल और खारिज हैं उनके दो दो रुबो आजाद हो गए, तो कुल सात हिस्से आजादी के मुस्तहिक हो गए। और आप जानते हैं कि मरजुल मौत के अंदर जो इताक है وہ وصیت کے درجے میں ہے, صرف ثلث میں نافذ ہوتا ہے, لہذا اس سات کو ثلث قرار دیں گے. معلوم ہوا دو ثلث وارثوں کے لیے بچنے چاہیے. اب اگر اس آقا کے صرف یہی غلام ہیں, صرف یہی تین غلام ہے اس کا مال اور کوئی مال نہیں, تو اب ایسی تقسیم چاہیے ہمیں کہ سات حصے آزاد ہو جائیں تو اس سے دگنے یعنی دو ثلث وارثوں کے لیے باقی بچ جائیں. تو جب اس ثلث میں سات حصے ہیں تو جو دو ثلث وارثوں کے لیے بچیں گے اس میں بھی سات سات حصے کر دیں گے. تو گویا کل حصے 21 چاہیے ہمیں, 21 میں سے سات کو آزاد کرنا ہے اور 14 میں سعی کروائی جائے گی. تو چنانچہ ہر غلام کے جب سات سات حصے کر دیں گے تو یہ تین غلام ہیں 21 حصے ہو گئے. تو خارج اور داخل ان کے سات میں سے دو دو حصے آزاد ہو گئے اور پانچ پانچ حصوں کے اندر وہ سعی کریں گے اور پیسے کما کر لا کر وارثوں کو دیں گے. تو پانچ اور پانچ 10 حصے, 10 حصے وارثوں کے لیے ہوئے خارج اور داخل کے, اور 4 حصے آزاد ہو گئے. اور پھر وہ جو ثابت تھا اس کے 3 حصے آزاد ہوئے اور 4 حصے وارثوں کے لیے بچ گئے. تو 10 حصے پہلے وارثوں کے لیے بچے تھے اور یہ 4 بھی, تو 14 حصے وارثوں کے لیے بچ گئے. اور جو آزاد ہوئے تھے داخل اور خارج میں سے وہ 2 اور 2 4 تھے, اور 3 حصے اس ثابت میں سے آزاد ہوئے تو 7 ہو گئے. تو 7 حصے یہ ایک ثلث بن گیا, یہ تینوں غلاموں میں سے آزاد ہوں گے یہ حصے, اور 14 حصے وارثوں کے لیے بچ گئے جس میں وہ غلام سعی کریں گے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک داخل کا صرف ربع آزاد ہوگا, تو ان کے نزدیک آزادی کا ایک حصہ کم ہو گیا. جب ایک حصہ کم ہوا تو کل آزاد ہونے والے حصے 6 ہیں, اور باقی وارثوں کے لیے جو بچنے چاہیے اس سے دگنے یعنی 12 حصے بچنے چاہیے یعنی 2 ثلث. تو لہذا کل غلاموں کے 18 حصے ہمیں چاہیے, تو ہر غلام کے 6 6 حصے کر دیں گے. تو جو خارج ہے اس کے 6 میں سے 2 حصے آزاد اور 4 میں وہ سعی کرے گا, اور جو داخل ہے اس کے 6 میں سے 1 حصہ آزاد 1 ربع اور باقی 5 حصوں میں وہ سعی کرے گا, اور جو ثابت ہے اس کے 6 میں سے 3 حصے آزاد اور 3 کے اندر وہ سعی کرے گا. تو خارج کے 2 حصے آزاد, داخل کا 1 حصہ آزاد, اور ثابت کے 3 حصے آزاد, تو یہ 6 حصے آزاد ہو گئے. اور خارج میں سے 4 حصے وارثوں کے لیے بچے, داخل میں سے 5 حصے وارثوں کے لیے بچے, داخل کی بات کر رہا ہوں, داخل میں سے 5 حصے وارثوں کے لیے بچے, تو 4 اور 5 9 حصے بچ گئے یہ خارج اور داخل میں سے, اور ثابت میں سے 3 حصے بچ گئے تو 9 اور 3 12, تو 12 حصے وارثوں کے لیے بچ گئے اور 6 حصے آزاد ہو جائیں گے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی. اور پھر آگے متن میں آیا کہ اگر یہی مسئلہ طلاق کے اندر ہو, یعنی خاوند کی 3 بیویاں ہیں اور تینوں غیر مدخولات ہیں, یعنی ان میں سے کسی سے بھی صحبت نہیں کی, غیر مدخولات کو ذکر کیا تاکہ یہ مسئلہ غلاموں کی جیسا بن جائے, جیسے اعتاق کی وجہ سے غلام آزاد ہو جاتا ہے اور اس پر آقا کی ملکیت نہیں رہتی, تو یہاں پر غیر مدخول بیاہ بیوی کو بھی اگر ایک طلاق بھی دے دی جائے تو وہ بائنہ ہو جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ نے مسئلہ پڑھا تھا نکاح کے اندر کہ اگر خاوند غیر مدخول بیاہ بیوی کو طلاق دے تو پھر اس کو نصف مہر دینا پڑے گا, نصف مہر ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اگر خاوند اور بیوی میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے, پھر چاہے صحبت نہ بھی کی ہو, پھر بھی پورا مہر دینا پڑتا ہے. تو معلوم ہوا غیر مدخول بیاہ کو صرف طلاق کی صورت میں نصف مہر دینا پڑے گا, موت کی صورت میں نصف مہر نہیں ہے بلکہ پورا مہر ہے بھائی. تو یہاں اب جب خاوند کے پاس 2 بیویاں آئیں اور خاوند نے ان سے کہا احداکما طالقن, تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے, پھر ایک باہر چلی گئی اور تیسری بیوی آ گئی, اب پھر یہ جو 2 بیویاں موجود ہیں خاوند نے پھر ان سے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے احداکما طالقن, تو اس صورت میں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں جو خارج بیوی تھی جو نکل گئی تھی اس کا ربع مہر ساقط ہوگا, اور وہ جو ثابت ہے جو وہیں رہی اس کے 3 ثمن جو ہیں وہ مہر ساقط ہوگا, اور وہ جو داخل تھی اس کا 1 ثمن مہر ساقط ہوگا. میں نے بتلایا تھا اعتاق جو ہے इता के अंदर वहां पूरी रकबा की बात चल रही थी, और यहां पर जब तलाक देगा तो निस्फ महर साकित होगा, तो वहां जब पूरे की बात होगी यहां पर निसफ की बात होगी, और जब वहां पर निसफ की बात होगी तो तलाक के मसले में रुबो की बात होगी, और इताक में जहां रुबो आता था तो तलाक के मसले में वहां सुमुन आएगा, क्योंकि निसफ का निसफ रुबो है और रुबो का निसफ सुमुन है भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ जो खारिज है बीवी उसका रुबो महर साकित, जो साबित है उसके तीन सुमुन महर साकित, और जो दाखिल है उसका एक सुमुन महर साकित होगा। और फिर इसमें बाज फुकहा फरमाते हैं कि ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल है, जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो दाखिल है उसका भी रुबो महर साकित होगा। जैसे खारिज बीवी का रुबो महर साकित, इसी तरह दाखिल का भी रुबो महर साकित होगा, अलबत्ता जो साबित है उसके तीन सुमन जो हैं वो साकित होंगे। जबकि बास वो कहा फरमाते हैं नहीं, यहां पर शेखैन रहमतुल्लाह का कौल भी वही है जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जैसे गुलामों के मसले में, गुलामों के मसले में दाखिल के अंदर सिर्फ रुबो के अता का हुक्म देते थे, यहां पर वो रुबो का निसफ कितना है सुमन, तो यहां पर भी दाखिल बीवी के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस दाखिल का सुमन साकित होगा भाई। फिर सुने तो बास फुकहा फरमाते हैं कि यहां पर दाखिल जो बीवी है उसका सुमन महर साकित होगा, और यह सिर्फ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल है। जबकि बात फरमाते हैं नहीं, यहां पर हमारे तीनों आइमा यही फरमाते हैं कि वो जो दाखिल बीवी है उसका सुमन महर साकित होगा। इसका मतलब यह है कि शेखैन ने इताक और ये तलाक के मसले में फर्क किया है, तो उसकी वजह क्या है, मैंने वजह भी जिक्र की थी। वजह यह कि गुलामों के अंदर जब आका ने दो गुलामों से पहले कहा कि तुम दोनों में से एक आजाद है, तो इताक दोनों में फैल गया, तो दोनों अभी भी गुलाम हैं, तो उनमें से एक यही रहा, ये मुकातब के दर्जे में है लेकिन है तो गुलाम ही, और दूसरा गुलाम आया वो भी गुलाम है। तो आका ने जब दोनों से कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तो आका का ये ईजाब सही है क्योंकि ये दोनों गुलाम हैं, ये दोनों एक मुकातब है और एक आम गुलाम है, तो यहां ईजाब सानी सही है। जबकि बीवियों के मसले में ऐसा नहीं है, बीवियों के मसले में वजह यह है कि जब खावंद ने पहली दो बीवियों से कहा इहदा कुमा तालिकुन, तुम दोनों में से एक को तलाक है, तो तलाक की तो तनसीफ नहीं हो सकती कि आधी आधी तलाक दोनों में तकसीम कर दी जाए, लिहाजा तलाक एक को होगी, और जब एक को तलाक होगी तो वह अजनबिया बन जाएगी क्योंकि वह गैर मदखूल बिहा है। तो लिहाजा अगर खावंद ने वो जो खारिज बीवी थी उसका इरादा किया था, तो ये जो साबित थी मालूम हो ये अभी भी बीवी है, और तीसरी बीवी आ गई, तो साबित भी बीवी और वो दाखिल भी बीवी है, लिहाजा दूसरी दफा जब खावन ने कहा कि हदा कुमा तालिकुन, तो खावन का ये ईजाब भी सही है, मालूम हो वो तलाक दे रहा है क्योंकि दोनों इसकी बीवियां हैं। लेकिन अगर पहले ईजाब में खावन ने अगर साबित का इरादा किया था तो साबित तो अजनबिया हो चुकी है, लिहाजा जब तीसरी बीवी आ गई तो अब एक अजनबिया है यानी तलाक वाली हो चुकी है और दूसरी बीवी है, तो इस सूरत में खावंद का यह कहना इहदा कुमा तालिकुन कि तुम दोनों में से एक तलाक वाली है, यह ईजाब नहीं, ये बल्कि यह तो खबर दे रहा है। जैसे आका के सामने उसका एक गुलाम भी खड़ा है और एक आजाद आदमी भी खड़ा है, आका उनसे कहता है अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, तो ये नहीं कहेंगे आका अपने गुलाम को आजाद कर रहा है, आका तो खबर दे रहा है वाकई हकीकत में एक गुलाम है और एक आजाद है। तो लिहाजा अगर खावन ने ईजाब अव्वल में वो साबित बीवी का इरादा किया था तो वो अजनबिया बन चुकी है, लिहाजा जब दूसरी आ गई तो अब एक बीवी है और एक तलाक वाली है, तो दूसरी मरतबा जब खावन ने कहा कि इहदा कुमा तालिकुन, तुम दोनों में से एक तलाक वाली है, तो ये तो खबर दे रहा है, ये तलाक नहीं दे रहा। मालूम हुआ कि तलाक के मसले में खावन ने जो पहला ईजाब किया वो तो ईजाब ही है हर सूरत में, लेकिन जो दूसरा ईजाब किया वो बाज एतबार से देखें तो ईजाब है और बाज एतबार से देखें तो वो ईजाब नहीं है, वो इखबार है, वो खबर दे रहा है। अगर उसने खारिज का इरादा किया था ईजाब अव्वल में तो दूसरा ईजाब सही है, और अगर उसने साबित का इरादा किया था पहले ईजाब में तो ईजाब सानी है ही नहीं, बल्कि यह इखबार है, वह खबर दे रहा है। तो लिहाजा मालूम हुआ ईजाब सानी बाज एतबार से है, बाज एतबार से बातिल है। अगर ईजाब सानी को मान लिया जाए, तो ईजाब सानी को ईजाब करार दिया जाए तो फिर निस्फ महर साकित होता है, और अगर ईजाब सानी को इखबार करार दिया जाए तो फिर कोई महर साकित नहीं होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये तो खबर दे रहा है। तो बाज एतबार से देखें ईजाब सानी के अंदर कोई महर साकित नहीं हो रहा, और बाज एतबार से देखें तो निस्फ महर साकित हो रहा है। तो हमने दरमियाना रास्ता इख्तियार किया, हमने यह भी नहीं कहा कि आधा महर साकित होगा, हमने यह भी नहीं कहा कि कुछ भी नहीं साकित होगा, हमने इसको ईजाब भी नहीं करार दिया। ईजाब करार देते तो आधा महर साकित हो जाता, हमने इसको इखबार भी करार नहीं दिया, अगर इखबार करार देते तो कोई महर साकित ना होता, बल्कि हमने दरमियाना रास्ता इख्तियार किया कि रोबए महर साकित होगा, इसमें ना आधा साकित होगा और ना ऐसा हो कि कुछ भी साकित ना हो, बल्कि दरमियानी सूरत के इस निसफ का निसफ यानी रुबए महर साकित होगा, और वो रुबा फिर दोनों के अंदर तकसीम हो जाएगा। और रुबा का निसफ कितना है? सुमुन। तो साबित का सुमुन मजीद साकित हो गया महर, और दाखिल का भी सुमुन महर साकित हो गया। तो इसलिए यहां पर शेखैन रहमहुमल्लाह ने फर्क किया है गुलामों के मसले से, क्योंकि गुलामों के मसले में ईजाब सानी हर हाल में ईजाब ही ईजाब है, जबकि ये बीवियों के मसले में, तलाक के मसले में ईजाब सानी मीन वजह इखबार है और मीन वजह ईजाब है, यानी इस बात तलाक है भाई। बाज एतबार से बात समझ में आ गई, फर्क समझ में आ गया। और फिर उसके बाद आगे आपने मसला पढ़ा था कि अगर आका ने अपने दो गुलामों से कहा अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, तो अब इसके लिए बयान चाहिए, लेकिन अगर बयान से पहले दोनों में से एक मर गया तो दूसरा आजादी के लिए मुतय्यन हो जाएगा। वजह यह कि दूसरा अब वो एताक का महल ही ना रहा। मैंने आपको बतलाया था कि ये जो बयान होता है ये भी बाज़ एतबार से ईजाब ही है, यानी ईजाब इत्क है, इस बात इत्क है। और जब दोनों गुलामों में से एक मर गया तो वो जो मर गया वो तो एताक का महल ही ना रहा, तो लिहाजा बयान के जरिए उसका एताक मुमकिन ही ना रहा, तो दूसरा गुलाम ही आजादी के लिए मुतय्यन हो गया। और इसी तरह आका ने दो गुलामों से कहा है अहदुकुमा हुर्रुन, और फिर दोनों में से एक को आका ने बेच दिया, तो दूसरा गुलाम आजादी के लिए मुतय्यन हो जाएगा, क्योंकि एक गुलाम तो आका का ममलूक ही ना रहा, अब तो आका इसको आजाद कर ही नहीं सकता। या इसी तरह अगर दोनों में से एक को आका ने मुदब्बर बना दिया तो इस सूरत में भी दूसरा गुलाम आजादी के लिए मुअय्यन हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मुदब्बर तो आजादी का मुस्तहिक हो चुका है, और आका ने जब कहा था अहदुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, और वो कामिल गुलाम थे, मालूम हुआ आका कामिल आजादी चाहता है, और तो कामिल इत्क जो है वो तो आम गुलाम में हो सकता है, मुदब्बर में नहीं, क्योंकि मुदब्बर तो पहले ही आजादी का मुस्तहिक हो चुका है, उसने तो हर हाल में अब आजाद होना है भाई। तो लिहाजा जब आका ने इन दोनों गुलामों में से एक को मुदब्बर बना दिया तो अब दूसरा गुलाम आजादी के लिए मुतय्यन हो जाएगा। और आपको मैंने यह भी बतलाया था कि आका का सिर्फ बेचना जरूरी नहीं है, बेचना जरूरी नहीं है, बल्कि बेचने का इरादा भी कर लेता है आका, उसका भावताव भी कर लेता है किसी के साथ, तो इस सूरत के अंदर भी दूसरा गुलाम आजादी के लिए मुतय्यन हो जाएगा, क्योंकि जब ये आका इसको बेचना चाहता है या इसी तरह हिबा करना चाहता है या सदका करना चाहता है तो मालूम हुआ इसके अंदर उसने अपनी मिल्कियत बरकरार रखी है, लिहाजा दूसरा गुलाम आजादी के लिए मुतय्यन हो जाएगा। अब आइए आज के सबक पर। وكذلك لو قال لامرأتيه إحداكما طالق ثم ماتت إحداهما لما قلنا وكذلك لو وطئ إحداهما لما نبين ولو قال لأمتيه إحداكما حرة ثم جامع إحداهما لم تعتق الأخرى عند أبي حنيفة رحمه الله وقال تعتق بي سورة مسألة یہ कि खावंद ने अपनी दो बीवियों से कहा इहदा कुमा तालिकुन, तुम दोनों में से एक को तलाक है, तो इस सूरत में याद रखो खावंद को मजबूर किया जाएगा कि वो बयान करे कि उसने किसका इरादा किया था, लेकिन बयान करने से पहले ही उन दोनों बीवियों में से एक का इंतकाल हो गया, तो फिर इस सूरत में याद रखो ये जो बीवी जिंदा बच गई है ये तलाक के लिए मुतय्यन हो जाएगी। वजह यह कि एक बीवी मर चुकी है तो वो अब तलाक का महल ही ना रहा। मैंने आपको बतलाया था कि ये जो बयान है ये भी मीन वजह ईजाब है, इस बात है, यानी इस बात पिछले मसले में था इस बात इत्क और यहां होगा इस बात तलाक। तो ये जो बयान है ये भी ईजाब है यानी इस बात तलाक है, लेकिन यहां पर तो एक बीवी मर चुकी है उसमें तो तलाक साबित ही नहीं हो सकती, वो तलाक का महल ही ना रही, तो लिहाजा दूसरी बीवी तलाक के लिए मुतायन हो जाएगी। इसी तरह अगर खावंद ने इन दो बीवियों में से एक से वती कर ली तो इस सूरत में भी याद रखो वो जो दूसरी बीवी है वो तलाक के लिए मुतायन हो जाएगी। खावंद ने अपनी दो बीवियों से कहा तुम दोनों में से एक को तलाक है और फिर बाद में खावंद ने बयान से पहले उन दोनों बीवियों में से किसी एक से सोहबत कर ली तो मालूम हुआ खावंद इसके अंदर अपनी मिलके निकाह को बरकरार रखना चाहता है, तो लिहाजा इस खावंद के वती को ही बयान करार दिया जाएगा और दूसरी बीवी तलाक के लिए मुतायन हो जाएगी। तो कहते हैं वकदालिका लौ काल लिमरअतैही, और इसी तरह होगा अगर कहा खावंद ने अपनी दो बीवियों से इहदाकुमा तालिकुन के तुम दोनों में से एक को तलाक है, सुम्मा मातत इहदाहुमा फिर उन दोनों में से एक मर गई, तो इसमें भी इसी तरह हो गए यानी दूसरी बीवी तलाक के लिए मुतायन हो जाएगी। लिमा कुल ना, उस वजह से जो हमने कहा क्योंकि वो जो मर चुकी है वो तलाक का महल ही न रही भाई। वकदा लवती अहदा हो मा लिमा नुबैनो, और इसी तरह होगा यानी दूसरी बीवी मुतायन हो जाएगी, लवती अहदा हो मा अगर खावन ने इन दो बीवियों में से एक के साथ वती कर ली, लिमा नुबैनो उस वजह से जो हम बयान करेंगे, आगे साहिब हिदाया बयान करेंगे। तो जब एक बीवी से वती कर ली तो तलाक के लिए दूसरी मुतायन हो गई भाई। वजह ये कि ये जो निकाह है इसकी वजह से वती हलाल हो जाती है और ये जो तलाक है इसकी वजह से वती हराम हो जाती है। बाज़ औक़ात फौरन तलाक के बाद ही वती हराम हो जाती है, मसलन तलाक बाइन दी है और अगर तलाक रजई दी है तो इद्दत के बाद वती हराम हो जाएगी। तो मालूम हुआ निकाह जो है वो वती को हलाल करता है और तलाक जो है वो वती को हराम करती है, लिहाजा दोनों में से एक के साथ जब खावन ने वती कर ली मालूम हुआ इसके अंदर उसने अपनी मिलके निकाह को बरकरार रखा है भाई, और तो तलाक के लिए दूसरी मुतायन हो जाएगी। तो कहते हैं वकदा लवती अहदा हुमा लिमा नुबैनो, और इसी तरह दूसरी मुतायन हो जाएगी अगर खावन ने दोनों में से एक से वती कर ली, लिमा नुबैनो उस वजह से जो हम बयान करेंगे। वलव काल ली अमतही इहदा कुमा हुर्रतुन, ये मुश्किल मसला है भाई, जरा तवज्जो से सुनिए। सूरत मसला ये, आका ने अपनी दो बांदियों से कहा इहदा कुमा हुर्रतुन तुम दोनों में से एक आजाद है, बाद में आका ने एक बांदी के साथ सोहबत कर ली तो साहिबैन फरमाते हैं कि इत्क के लिए दूसरी बांदी मुतायन हो गई। ये जो आका का सोहबत करना है इसको बयान करार दिया जाएगा, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, यहां पर आका का एक बांदी से सोहबत करना इसको बयान करार नहीं दिया जा सकता, लिहाजा दूसरी वाली आजादी के लिए मुतायन नहीं, दूसरी वाली आजादी के लिए मुतायन नहीं। किसके नजदीक? इमाम साहेब के नजदीक। तो कहते हैं वलौ काल ली अमतैही, और अगर आका ने अपनी दो बांदियों से कहा इहदाकुमा हुर्रतुन तुम दोनों में से एक आजाद है, सुम्मा जामा इहदाहुमा फिर इन दोनों में से एक के साथ आका ने अब सोहबत कर ली, लम तातिकिल उखरा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह तो दूसरी आजाद नहीं होगी इमाम साहेब के नजदीक। वकाला तातिकु और साहिबैन फरमाते हैं दूसरी आजाद हो जाएगी, लिअन्नल वत्अ ला यहिल्लु इल्ला फिल मिल्की, साहिबैन फरमाते हैं कि दूसरी आजादी के लिए मुतायन हो जाएगी। वजह यह कि वती सिर्फ अपनी मिल्कियत में हलाल होती है, गैर मिल्कियत में हलाल नहीं। अपनी बांधी है तो वती हलाल है, अपनी बांधी नहीं तो वती भी हलाल नहीं। तो जब दोनों में से एक गैर मुतायन को आका ने आजाद कर दिया है और उसके बाद वो एक बांदी के साथ सोहबत कर रहा है, उसके साथ जमा कर रहा है, मालूम हुआ इसके अंदर वो अपनी मिल्कियत को बाकी रख रहा है, तो दूसरी बांदी आजादी के लिए मुतायन हो जाएगी। तो कहते हैं लि अन्नल वत अला यहिल्लु इल्ला फिल मिल्की, इसलिए क्योंकि वती हलाल नहीं होती मगर अपनी मिल्कियत में। व इहदा हुमा हुर्रतुन, और हाल यह है कि इन दोनों में से एक आजाद है। फकान बिल वती मुस्तबकियन, तो लिहाजा वती के जरिए आका बाकी रखने वाला है अल मिल का, अपनी मिल्कियत को। फिल मौतू अति मौतूआ के अंदर वो बांदी जिसके साथ आका ने वती कर ली है, मालूम हुआ वती के जरिए आका उसमें अपनी मिल्कियत को बाकी रख रहा है भाई। तो कहते हैं फकान बिल वती मुस्तबकियन इल मिल का फिल मौतू अति, तो वती के जरिए आका जो है अपनी मिल्कियत को बाकी रख रहा है मौतूआ के अंदर। फतायनतिल उखरा लिजवाली ही बिल इत्की, तो दूसरी बांदी मुतायन हो गई लिजवाली ही बिल इत्की की आजादी के जरिए उसकी मिल्कियत जायल हो जाए। दूसरी बांदी मुतायन हो गई लिजवाली ही बिल इत्की कि उसकी मिल्कियत जायल हो जाए, खत्म हो जाए बिल इत्की आजादी के जरिए। कमा फी तलाकी, जैसे कि तलाक के अंदर था। साहिबैन इन बांदियों के मसले को तलाक के मसले पर कियास करते हैं, और तलाक के मसले में खावन जब एक बीवी से सोहबत करता था तो उस सोहबत को बयान करार दिया जाता था। तो यहां पर भी आका जब दो बांदियों में से एक से वती करेगा तो इस वती को बयान करार दिया जाएगा कि दूसरी बांदी आजादी के लिए मुतायन है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, बीवी के मसले में तो वती को बयान करार दिया जाएगा तलाक के लिए, लेकिन बांदियों के मसले में सोहबत को बयान करार नहीं दिया जा सकता। व लहू, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मिल का काइमुन फिल मौतूअति, के मिल्कियत जो है वह मौजूद है उस बांदी में जिससे सोहबत की गई। मिल्कियत मौजूद है जिस बांदी से सोहबत की गई, चाहे जौन सी भी बांदी हो, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो, जिस बांदी से भी सोहबत की गई उसके अंदर मिल्कियत मौजूद है। लिअन्नल ईका फिल मुनक्करती, इसलिए क्योंकि हुर्रियत को वाके करना, हुर्रियत को साबित करना फिल मुनक्करती, वो नकेरा बांदी के अंदर था, यानी गैर मुअय्यन बांदी में था। मुनक्कर का क्या माना? गैर मुतायन। लिअन्नल ईका फिल मुनक्करती, इसलिए क्योंकि हुर्रियत का वाके करना गैर मुअय्यन बांदी में था। वहिया मुअय्यनतुन, और हाल यह है कि यह बांदी जिससे वती कर रहा है यह तो मुतायन है, जिससे सोहबत कर रहा है वो मुतायन है, लिहाजा मुअय्यन को गैर मुअय्यन के लिए बयान करार नहीं दिया जा सकता। इमाम साहब की दलील चल रही है। इमाम साहब फरमाते हैं कि आका ने अपनी दो बांदियों से कहा इहदा कुमा हुर्रतुन, तो जिसमें आजादी को साबित किया वो गैर मुअय्यन है, वो मुनक्करा है भाई, और जिसे वती करेगा ये तो मुअय्यन है भाई, तो मुअय्यन को गैर मुअय्यन के लिए बयान करार नहीं दिया जा सकता। तो कहते हैं लिअन्नल ईका फिल मुनक्करति वहिय मुअय्यनतुन, इसलिए क्योंकि तलाक का वाके करना गैर मुअय्यन में है, और हाल यह है कि यह बांदी तो मुअय्यन है जिसके साथ वती की है। फकान वतुहा हलालन, तो इसकी वती हलाल है, वती हराम नहीं, जिस बांदी से भी वो वती करे चाहे पहली से चाहे दूसरी से, तो ये वती इसकी हलाल होगी। फला युजअलु बयानन, लिहाजा इसको बयान नहीं करार दिया जाएगा। वलिहाजा हल्लवत उहुमा अला मजहबी ही, और इसीलिए दोनों बांदियों की वती हलाल है इमाम साहेब के मजहब पर। इमाम साहेब के मजहब के मुताबिक ये जो वती है इसको बयान करार नहीं दिया जा सकता, तो दोनों बांदियों से अभी भी आका के लिए वती जायज है भाई। तो कहते हैं वलिहादा हल्लवत उहुमा अला मजहबी ही, लिहाजा इन दोनों बांदियों की वती हलाल है इमाम साहेब के मजहब पर। इल्ला अन्नहु ला युफ्ता बिही, मगर यह कि इस पर फतवा नहीं दिया जाएगा। साहिब हिदाया फरमा रहे हैं इमाम साहेब का यह मजहब है कि आका ने अपनी दो बांदियों से कहा है इहदा कुमा हुर्रतुन, फिर भी दोनों बांदियां हलाल हैं, दोनों के साथ आका सोहबत कर सकता है, लेकिन इस बात पर फतवा नहीं दिया जाएगा। इस मसले में इमाम साहब के मजहब पर फतवा नहीं दिया जाएगा। वजह यह कि इमाम साहब मसले की इंतहाई गहराई में चले गए, और मैंने आपको बतलाया जब इमाम साहब मसले की इंतहाई गहराई में चले जाते हैं, जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो फिर साहिबैन भी इमाम साहब से इख्तिलाफ कर लेते हैं। तो यहां पर भी इमाम साहब मसले की इंतहाई गहराई में चले गए, और इतनी गहराई तक पहुंचना तो हर किसी के बस की बात नहीं है। लिहाजा आम लोग जब इस मसले को सुनेंगे तो फिर वो इमाम साहब पर एतराज करेंगे कि दो बांदियों में से एक को तो आका पर हराम होना चाहिए, एक के साथ तो आका के लिए सोहबत जायज नहीं होनी चाहिए। तो लोग एतराज करेंगे कि इमाम साहब ने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया और आका के इस कॉल के बाद भी फरमा रहे हैं आका के लिए दोनों बांदियां हलाल हैं। भाई बात समझ में आ रही है? तो लोग तो एतराज के लिए मौका ढूंढते हैं भाई। तो इसीलिए साहिब हिदायत फरमाते हैं कि इमाम साहब चूंकि मसले की इंतहाई गहराई में चले गए हैं, आम लोगों की अकल वहां तक नहीं पहुंच सकती, लिहाजा इस मसले में इमाम साहब के मजहब पर फतवा नहीं दिया जाएगा, अगरचे उनका मजहब यही है। और इसकी बाकायदा दलील भी जिक्र कर दी साहिब हिदायत ने, आगे भी तफसील इसकी बयान करेंगे भाई इसकी, कि इमाम साहब का मजहब इंतहाई गहरा है। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु ला युफ्ता बिही, मगर ये कि इस पर फतवा नहीं दिया जाएगा कि दोनों बांदियां आका के लिए हलाल हैं, इस पर फतवा नहीं दिया जाएगा। सुम्मा युकालु लितकु गैरु नाजिलिन कबल अल बयान लितअल्लुकिही बिही औ युकालु नाजिलुन फिल मुनक्करति फयज़हरु फी हक़्क़ि हुक्मिन तक़बलुहु। अच्छा भाई, ये के एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया। एतराज यह होता है कि आका ने अपनी दो बांदियों से कहा है इहदा कुमा हुर्रतुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, तो आप हमें यह बताइए कि दोनों में से इस वक्त तक एक आजाद हो चुकी है या अभी एक भी आजाद नहीं हुई, यानी इत्क उतर चुका, इत्क आ चुका है या नहीं आया। अगर इत्क आ चुका है तो फिर दोनों कैसे हलाल हो सकती हैं? एक तो आजाद हो चुकी है, वो तो यकीनन आका के लिए हराम हो गई, और अगर आप ये कहते हैं कि अभी इत्क आया ही नहीं, दोनों में से एक भी आजाद नहीं हुई, तो इसका तो मतलब है आका जो आकिल बालिग है उसके कौल को आपने लग्व करार दे दिया कि उसका कौल बेकार है, उसका कोई फायदा ही नहीं। हालांकि आकिल और बालिग इंसान के कौल को वैसे लग्व करार नहीं दिया जा सकता। तो दो खराबियों में से एक खराबी यहां जरूर लाजिम आ रही है, या तो आका का कौल इहदा कुमा हुर्रतुन, इसकी वजह से आजादी आ चुकी है, या आजादी नहीं आई। अगर आजादी आ चुकी है तो फिर कहना कि दोनों बांदियां हलाल हैं यह दुरुस्त नहीं, और अगर आप यह कहते हैं कि अभी आजादी आई ही नहीं है तो इसका तो मतलब है आपने आका जो एक आकिल बालिग इंसान है उसके कौल को आपने लग्व करार दे दिया कि वो जाया चला गया, उसका कोई फायदा नहीं। हालांकि किसी आकिल बालिग के कौल को वैसे ही लग्व करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई? तो साहिब हिदायत दोनों सूरतों को लेकर जवाब देंगे कि यूं भी कहा जा सकता है आजादी आ चुकी है, और यूं भी कहा जा सकता है अभी आजादी नहीं आई। देखिए मसला यूं कहा जाएगा कि एक सूरत यह है कि यूं कहा जाएगा अभी आजादी आई ही नहीं, क्योंकि आजादी का दारोमदार आका के बयान पर है, वो बयान तो करे कि उसने किसका इरादा किया था, पहली बांदी का या दूसरी का। भाई तो इस आजादी का ताल्लुक बयान से है, और बयान चूंकि अभी नहीं आया लिहाजा अभी किसी के अंदर भी आजादी नहीं आई भाई, लिहाजा दोनों बांदियां क्या हैं? आका के लिए हलाल हैं। ये इसी तरह है जैसे कोई तलाक या इताक को शर्त के साथ मुअल्लक कर दे। कोई अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई, तो जब तक वो शर्त नहीं पाई जाएगी तलाक बाकी नहीं होगी। तो यहां पर भी जब तक बयान नहीं आएगा तब तक इताक भी नहीं आएगा। भाई बात समझ में आ गई? यूं कहा जाएगा कि आजादी आ चुकी है, आजादी नाजिल हो चुकी है, लेकिन गैर मुअय्यन बांदी के अंदर आजादी आई है, और आका जिसके साथ वती करेगा वो तो मुअय्यन बांदी है, लिहाजा मुअय्यन बांदी के साथ जो वती है उसको उस गैर मुअय्यन इताक के लिए बयान करार नहीं दिया जा सकता। इताक क्या है? गैर मुअय्यन में है, और वती किस में है? मुअय्यन में है। तो इस मुअय्यन बांदी के अंदर वती जो है इसको गैर मुअय्यन इताक के लिए बयान करार नहीं दिया जा सकता। हां कोई ऐसा फेल आ जाए आका की तरफ से, तवज्जो से सुनो भाई, गहरी बात करेंगे साहिब हिदाया। हां अगर कोई ऐसा हुक्म आया जिसे नकेरा कबूल कर लेता है, जिसे नकेरा कबूल कर लेता है तो उसके हक में यह आजादी जाहिर होगी। तवज्जो है भाई, दो सूरतें बनती थी, एक सूरत क्या, या तो आजादी आ चुकी है या आजादी नहीं आई। अगर आजादी आ चुकी है तो एक हराम हो चुकी है, और अगर आजादी नहीं आई तो आपने आकिल बालिग के कलाम को लग कर दिया। तो पहली शिक क्या कि आजादी अभी आई ही नहीं, और हमने आकिल बालिग के कलाम को लग नहीं किया, बल्कि आजादी इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी बयान नहीं आया, क्योंकि बयान आएगा तो आजादी आ जाएगी। यह इसी तरह है जैसे कोई तलाक या इताक को शर्त के साथ मुअल्लक कर दे। कोई अपनी बीवी से कहता है अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई, तो जब तक वो शर्त नहीं पाई जाएगी तलाक बाकी नहीं होगी। तो यहां पर भी जब तक बयान नहीं आएगा तब तक इताक भी नहीं आएगा भाई। जैसे मुअल्लक भी शर्त के अंदर, जब तक शर्त ना पाई जाए वो मुअल्लक भी शर्त नहीं पाया जा सकता, इसी तरह यहां पर भी जब तक बयान नहीं आएगा तो ये इताक भी नहीं आ सकता। और अगर दूसरी शिक ले लें कि इताक आ चुका है तो उसमें भी हम ये कहेंगे कि ये इताक आ तो चुका है लेकिन इस इताक का जुहूर उस चीज में होगा, उस हुक्म में होगा जिसको नकेरा कबूल कर ले। इताक का जुहूर उस हुक्म में होगा, तवज्जो से, इताक का जुहूर उस हुक्म में होगा जिसको नकेरा कबूल कर ले, और जिस हुक्म को नकेरा कबूल नहीं कर सकता वहां इताक का जुहूर भी नहीं होगा, यानी वो इताक के लिए बयान नहीं बन सकता। तवज्जो है, तो इताक तो किया है गैर मुअय्यन में जी। तो लिहाजा बयान भी गैर मुअय्यन वाली चीज होनी चाहिए जी। और वती जो की है वो तो एक मुअय्यन बांदी के साथ की है, तो लिहाजा मुअय्यन बांदी के साथ वती उस इताक के लिए बयान नहीं बन सकती जो गैर मुअय्यन के अंदर था। हां कोई और चीज आई जिसको नकेरा कबूल कर लेता है, कोई और चीज ऐसी आ गई तो फिर उसको बयान बनाएंगे। मसलन बै जो है गैर मुअय्यन की भी जायज है। मसलन एक आदमी के दो गुलाम हैं, वो उनको बेच रहा है और वो मुश्तरी से कहता है कि इन दोनों में से मैंने एक गुलाम आपको 10 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया, जिसको भी आप लेना चाहें। तो चुनांचे उसने कहा मुझे कबूल है। अब देखो बै हो गई लेकिन अभी गुलाम मुतायन नहीं, और मुश्तरी इन दोनों में से जिसको भी लेना चाहे ले सकता है इस बै के अंदर भाई। तो देखो मालूम हुआ बै ऐसा हुक्म है जिसको नकेरा कबूल कर लेता है। वजह यह कि बै एक मानवी चीज है। बै किस चीज का नाम है? मैंने आपसे कहा मैंने आपको यह किताब 100 रुपए में बेच दी, आपने कहा मुझे कबूल है, मेरे और आपके दरमियान बै हो गई। तो ये जो मेरे और आपके दरमियान अकद हुआ ये एक मानवी चीज है। बै किसका नाम था? ये ईजाब और कबूल की वजह से वो जो मेरे और आपके दरमियान अकद हुआ है उसका नाम है बै, और वो एक मानवी चीज है, उसकी कोई शक्लो सूरत नजर नहीं आ रही हमें। तवज्जो है, बै की कोई शक्लो सूरत हमें नजर नहीं आ रही, एक मानवी चीज है, वो जो हासिल बिल मस्तर, जैसे निकाह है, मियां बीवी इजाब और कबूल करते हैं, उनका निकाह हो जाता है, वो मियां बीवी आपस में बन गए। अब ये जो निकाह है ये दोनों के दरमियान अकद का नाम है और इसकी कोई सूरत नहीं है, ये एक मानवी चीज है भाई। तवज्जो है, तो बै भी एक मानवी चीज है। तो लिहाजा बै जो है वो गैर मुअय्यन की भी जायज है, जबकि वती, वती तो एक फेले हिस्सी है जो आंखों से नजर आता है, जिसका मुशाहदा होता है, लिहाजा वो गैर मुअय्यन में वती नहीं हो सकती। जब भी वती की जाएगी वो किसी मुअय्यन में होगी, लेकिन बै जो है वो गैर मुअय्यन में भी की जा सकती है। लिहाजा इताक आ चुका है लेकिन इताक गैर मुअय्यन में आया है, लिहाजा ये इताक ऐसी चीज के बारे में जाहिर होगा गैर मुअय्यन जिसको कबूल कर ले, गैर मुअय्यन, और वो इसके लिए बयान बन सकता है। लिहाजा आका इन दो बांदियों में से एक बांदी को बेचता है तो बै पाई गई, और बै तो गैर मुअय्यन में भी आ सकती है, लिहाजा ये बै बयान बन जाएगी उस इताक के लिए। मालूम हुआ दूसरी बांदी का इरादा किया था आका ने। तवज्जो है, यह बै क्या है? बै को गैर मुअय्यन चीज यानी नकेरा कबूल कर लेता है, लिहाजा यह बै बयान बन सकती है उस इताक गैर मुअय्यन के लिए। लेकिन वती वती तो गैर मुअय्यन में हो ही नहीं सकती, वती तो एक फ़िअल हिस्सी है भाई, वती जब भी होगी मुअय्यन के अंदर होगी। तो लिहाजा इस मुअय्यन बांदी के अंदर जो वती है इसको गैर मुअय्यन इताक के लिए बयान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गैर मुअय्यन में वती हो ही नहीं सकती। जबकि बै जो है, अगर बै आका करेगा इन दो बांदियों में से एक को बेचता है, तो यह बै जो है यह तो गैर मुअय्यन के अंदर भी हो जाया करती है, तो यह बै बयान बन जाएगा उस इताक गैर मुअय्यन के लिए। तवज्जो है, बात समझ में आ गई अच्छी तरह। तो कहते हैं सुम्मा युकाल, फिर कहा जा सकता है कि अल-इत्क गैरु नाजिलिन कबल अल बयानी, के आजादी नाजिल ही नहीं हुई बयान से पहले, अभी आजादी आई ही नहीं। लिताअल्लुक ही बिही, इस वजह से कि आजादी का ताल्लुक है बयान के साथ, जब बयान आएगा तब आजादी आएगी, बयान से पहले आजादी ही नहीं। जैसे खावन ने अपनी बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो जब तक वो शर्त नहीं आएगी तब तक बीवी को तलाक भी नहीं होगी। तो यहां भी इसी तरह है, जब तक बयान नहीं आएगा उस वक्त तक आजादी भी नहीं आएगी, एक सूरत। दूसरी औ युकालू, या कहा जा सकता है कि नाजिलुन फिल मुनक्करती, कि आजादी आ चुकी है गैर मुअय्यन बांदी के अंदर, गैर मुअय्यन में आजादी आ चुकी है, लेकिन इस आजादी का जुहूर उस हुक्म के हक में होगा जिसको नकेरा कबूल करता है, और जिसको नकेरा कबूल नहीं करता उसमें इस आजादी का जुहूर भी नहीं होगा, वो उसके लिए बयान भी नहीं बन सकता। फयज़हरु फी हक हुक्म तकबलुहु, लिहाजा ये आजादी जाहिर होगी ऐसे हुक्म के हक में, तकबलुहु जिसको गैर मुअय्यन यानी नकेरा कबूल कर लेता है। वल वक्त युसादिफुल मुअय्यनता, और हाल यह है कि वती ने तो मुलाकात की है मुअय्यन बांदी के साथ, तो यह वती उस गैर मुअय्यन इताक के लिए बयान नहीं बन सकती। बिखिलाफ तलाक, बखिलाफ तलाक के, साहिबैन ने इस बांदियों के मसले को कियास किया था तलाक के मसले पर, कि तलाक के मसले के अंदर खावन ने अगर अपनी दो बीवियों से कहा इहदाकुमा तालिकुन, और फिर दोनों में से एक से वती कर ली, तो तलाक के लिए दूसरी मुतय्यन हो जाएगी। तो यहां पर भी बांदियों के मसले में भी जब एक बांदी से वती कर ली तो दूसरी एताक के लिए मुतय्यन हो जाएगी। अब उसका जवाब दे रहे हैं, कहते हैं बिखिलाफ तलाक, बखिलाफ तलाक के, लिए अनल मकसूद अल असली या मिनन निकाह अलवलदू, इसलिए क्योंकि मकसूद असली जो होता है निकाह के जरिए अलवलदू, वो औलाद होती है। व कसदुल वलदी बिल वक यदुल्लु अल इस्तिबका अल मिल्क फिल मौतूअती, व कसदुल वलदी, और औलाद का इरादा करना बिल वती, वती के जरिए। खावन ने अपनी दो बीवियों से क्या कहा इहदाकुमा तालिकुन, और उसके बाद वो दो में से एक के साथ सोहबत करता है, तो मालूम हुआ वो औलाद का इरादा कर रहा है। तो वती के जरिए औलाद का इरादा करना वो दलालत करता है कि इसके अंदर वो अपनी मिल्कियत बाकी रखना चाहता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वक़्सदुल वलदी बिल वती, और वती के जरिए औलाद का इरादा करना यदुल्लु अल इस्तिबका अल मिल्क फिल मौतूअती, यह दलालत करता है मिल्कियत के बाकी रखने पर, फिल मौतूअती मौतूआ बीवी के अंदर, सियानतन लिल वलदी औलाद की हिफाजत के लिए, औलाद की हिफाजत के लिए। वजह यह कि जब निकाह बाकी है तो औलाद होगी, तो नसब साबित होगा औलाद का, और अगर निकाह टूट चुका है तो उसके बाद जो वती करेगा वो तो जिना है, और उससे तो औलाद का नसब साबित नहीं होगा। जब औलाद का नसब साबित नहीं होगा फिर तो उस बच्चे की कोई परवरिश की जिम्मेदारी नहीं लेगा, और बच्चा तो हलाक हो जाएगा, जाया हो जाएगा भाई। तो औलाद की हिफाजत के लिए खावंद का दो बीवियों में से एक से सोहबत करना इसको बयान करार दिया जाएगा, मालूम है इस बीवी के अंदर वो अपनी मिल्कियत बरकरार रखना चाहता है, इससे वो अपनी औलाद चाहता है, तो तलाक के लिए दूसरी मुतय्यन हो जाएगी। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वक़्सदुल वलदी बिल वती, और वती के जरिए औलाद का इरादा करना यदुल्लु अल इस्तिबका अल मिल्क फिल मौतूअती, यह दलालत करता है कि मौतूआ के अंदर वो मिल्कियत को बाकी रखना चाहता है, सियानतन लिल वलदी औलाद की हिफाजत के लिए कि उनका नसब साबित हो सके। अम्मल अमतु फल मकसूद मिन वतहा कजा उस शहवती दून अलवलदी, और बाकी जो बांदी होती है तो उसकी वती के लिए जो मकसूद होता है वो कजा उस शहवती, वो शहवत का पूरा करना होता है, दून अलवलदी ना कि औलाद का। फला यदुल्लु अलल इस्तिबका, लिहाजा बांदी की जो वती है वह इस्तिबका मिल्क पर दलालत नहीं करती, उसको बयान करार नहीं दिया जा सकता। बांदी के अंदर जो सोहबत की जाती है वो औलाद के लिए नहीं, वो सिर्फ कजाए शहवत, शहवत पूरी करने के लिए, लिहाजा उसको आप बयान नहीं बना सकते। तो कहते हैं अम्मल अमतु, बाकी बांदी जो होती है, फल मकसूद मिन वत इहा कजा उस शहवती दून अलवलदी, तो उसके अंदर वती से मकसूद जो है शहवत का पूरा करना होता है ना कि औलाद। फला यदुल्लु अलल इस्तिबका, तो लिहाजा उसके अंदर वती जो है वह इस्तिबका पर दलालत नहीं करती। आगे देखिए, वमन काल अली अमति ही इनकान अव्वल वलदिन तलिदीन हो गुलामन फअंत हुर्रतुन फवलदत गुलाम व जारियतन वला युदरा अय्युहुमा वलदुन अव्वलु अतक निस्फुल उम्मी व निस्फुल जारियति वल गुलाम अब्दुन। सूरत मसला ये, एक शख्स ने अपनी बांदी से कहा कि अगर तुमने पहले लड़के को जन्म दिया तो तुम मेरी तरफ से आजाद हो, और फिर उस बांदी ने एक लड़के और लड़की को इकट्ठा जन्म दिया। अब मालूम नहीं कि लड़का पहले पैदा हुआ है या लड़की पहले पैदा हुई है। तो कहते हैं इस सूरत में निसफ जो है वो बांदी आजाद हो जाएगी, और निसफ वो जो उसकी बेटी है वो आजाद हो जाएगी, जबकि लड़का उसी तरह गुलाम रहेगा भाई। तो कहते हैं वमन काल अली अमति ही, और जिस शख्स ने अपनी बांदी से कहा इनकान अव्वल वलदिन तलिदीन हो गुलामन, कि वो पहला बच्चा जिसको तुमने जन्म दिया अगर वो लड़का हुआ, फअंति हुर्रतुन, तो तू आजाद है, फवलदत गुलामन व जारियतन, तो उस बांदी ने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया, वला युदरा अय्युहुमा वलदुन अव्वलु, और ये मालूम नहीं है कि इनमें से पहला बच्चा कौन सा है, पहले लड़की पैदा हुई है या लड़का, ये इलम नहीं भाई। भाई मेरी किताब में इबारत इसी तरह है, वला युदरा अय्युहुमा वलदुन अव्वलु, लेकिन हिदायत के दूसरे नुस्खों में अव्वलन है भाई, और वलद ये फेल है भाई, इसम नहीं बल्कि फेल है, वला युदरा अय्युहुमा वुलिदा अव्वलन, और ये इबारत ज्यादा बेहतर है भाई। तो हिदायत के दीगर नुस्खों में यही इबारत है। तो कहते हैं वला युदरा अय्युहुमा वुलिदा अव्वलन, और ये मालूम नहीं कि इनमें से पहले कौन पैदा हुआ है, तो अतक निस्फुल उम्मी, तो वो जो मां है यानी बांदी आधी वो आजाद हो जाएगी, व निस्फुल जारियती, और निसफ जो उसकी बेटी है वो जो लड़की है वो आजाद हो जाएगी, वल गुलाम अब्दुन, और वो लड़का जो है वो गुलाम होगा। बात समझ में आ गई। याद रखो यहां मसला इसी तरह जिक्र है भाई, लेकिन शम्सुल अइमा इमाम सरखसी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला ने की सानियात के अंदर जिक्र फरमाया है कि यह मसला इस तरह नहीं है, ये मसला इस तरह नहीं है। वजह यह कि यहां बांदी की आजादी मुअल्लक है लड़के की पैदाइश के साथ, कि पहले वो लड़के को जन्म दे, और यहां शर्त का पता नहीं चल रहा, और जब शर्त का पता न चल रहा हो तो इस सूरत में मुनकिर का कौल मोतबर होता है। तवज्जो है, एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा कि अगर तूने फुलां काम किया तो तू आजाद है, अब पता नहीं चल रहा कि गुलाम ने वो काम किया है या नहीं किया, तो इस सूरत में मुनकिर का कौल मोतबर होता है। तो यहां पर भी बांदी ने एक लड़के और लड़की को जन्म दिया है, और सब इकरार कर रहे हैं आदम इलम का, कि हमें इलम नहीं पहले लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है। तो इस सूरत में मतन के अंदर तो मसला यह आया कि निसफ बांदी आजाद हो जाएगी और निसफ लड़की आजाद हो जाएगी, लेकिन किसानियात के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह इस मसले का जवाब नहीं, बल्कि इस सूरत के अंदर आका को कसम दी जाएगी। आका क्या कह रहा है, सब कह रहे हैं हमें इलम नहीं लड़का पहले पैदा हुआ है या लड़की, तो लिहाजा आका को कसम दी जाएगी कि वह कसम खाए कि उसे यह इलम नहीं है कि लड़का पहले पैदा हुआ है। मैंने बताया था आपको कि कसम इनकार पर खाई जाती है, और इस बात के लिए बैयना चाहिए। तो आका भी क्या कह रहा है, मुझे इलम नहीं है, तो आका को कसम खिलाई जाएगी कि तुम कसम खाओ तुम्हें इलम नहीं है कि लड़का पहले पैदा हुआ है। अगर आका यह कसम खा लेता है कि वल्लाह मुझे इलम नहीं है कि लड़का पहले पैदा हुआ है, तो इस सूरत में वो औरत बांधी ही रहेगी और उसकी बेटी भी बांधी ही है भाई। और अगर आका ने कसम खाने से इनकार कर दिया, इसका मतलब है कि वो एतराफ कर रहा है कि पहले लड़का पैदा हुआ है, तो इस सूरत में बांदी भी आजाद हो जाएगी और उसकी बेटी भी। बात समझ में आ गई? किस तरह? वजह यह कि आका जब इनकार कर रहा है कसम खाने से, तो इसका मतलब है लड़का पहले पैदा हुआ, और जैसे ही लड़का पैदा हुआ बांदी आजाद हो गई। लेकिन लड़का आजाद नहीं, क्योंकि लड़के की पैदाइश तो शर्त थी, और शर्त मुकद्दम होती है और मशरूत बाद में होता है। तो पहले लड़का पैदा हुआ और फिर बांदी आजाद हुई, लिहाजा लड़के को बांदी होने की हालत में ही इसने जन्म दिया है, और बांदी की औलाद भी ममलूक होती है, तो लड़का तो गुलाम है। लेकिन लड़के के बाद लड़की पैदा हुई तो मां तो आजाद हो चुकी है और औलाद जो है मां के ताबे होती है, लिहाजा अब जब आजाद औरत ने एक आजाद बेटी को जन्म दिया तो यह बेटी भी आजाद होगी। वजह समझ में आ गई? तो किताब में क्या मसला लिखा है कि जब किसी को भी इसका इलम नहीं, तो इस सूरत में निसफ बांदी आजाद और निसफ उसकी बेटी आजाद। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला के सानियात में क्या फरमाते हैं कि इस मसले का जवाब क्या है, यानी यह मसला क्या है कि इस सूरत में आका को कसम दी जाएगी कि वह अपने अदम इलम पर कसम खाए कि उसको इलम नहीं है, और अगर वह कसम खा लेता है तो इस सूरत में वो बांदी जो है वो बांदी ही रहेगी और उसकी बेटी भी बांदी ही है भाई। और अगर वो कसम से इनकार कर देता है तो मालूम हुआ कि पहले बेटा पैदा हुआ है, लिहाजा बांदी भी आजाद और उसकी बेटी भी आजाद। तो बहरहाल यहां मतन में तो आया वला युद्रा अय्युहुमा वुलिदा अव्वलन, और यह मालूम नहीं है कि इन दोनों में से पहले कौन पैदा हुआ है। तो अतका निसफुल उम्मी व निसफुल जारियती वल गुलामु अब्दुन, कि निसफ मां आजाद होगी, निसफ वो लड़की आजाद होगी, और वो लड़का जो है वो गुलाम होगा। अब उसकी वजह साहिब हिदायत जिक्र फरमा रहे हैं। वजह यह भाई कि यहां दो सूरतें बनती हैं, या तो लड़की पहले पैदा हुई है या लड़का। अगर लड़की पहले पैदा हुई है तो फिर मां आजाद नहीं, जब मां आजाद नहीं तो बेटी भी आजाद नहीं, और अगर लड़का पहले पैदा हुआ है तो फिर मां भी आजाद, क्योंकि शर्त पूरी हो गई, और फिर उसके बाद बेटी पैदा हुई, आजाद औरत ने एक आजाद बेटी को जन्म दिया तो बेटी भी आजाद हो जाएगी। तो लिहाजा दो सूरतें बनती हैं, एक सूरत के अंदर न मां आजाद न बेटी आजाद, और एक सूरत के अंदर मां भी आजाद और बेटी भी आजाद। तो हमने दरमियानी सूरत इख्तियार कर ली कि पता नहीं चल रहा, लिहाजा निसफ मां आजाद और निसफ बेटी आजाद। तवज्जो है किस तरह दरमियानी सूरत भाई, एक सूरत में ना मां आजाद है ना बेटी आजाद है, और एक सूरत में मां भी आजाद बेटी भी आजाद है। तो हमने ना दोनों की आजादी का फैसला किया और ना दोनों के ममलूक होने का फैसला किया, बल्कि दरमियाना फैसला किया कि निसफ मां आजाद और निसफ बेटी आजाद। तो कहते हैं लिअन्न कुल्ल वाहिदतिन मिन्हुमा तातिकु फी हालिन, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक आजाद हो जाता है, फी हालिन एक हालत में, वह हुआ मा इदा वलदतिल गुलाम अव्वला मर्रतिन, और वो इस वक्त है जब बांदी ने लड़के को पहली मर्तबा में जन्म दिया, अल उम्मु बिशर्ती, तो मां आजाद हो जाएगी शर्त की वजह से कि शर्त पूरी हो गई कि उसने पहले लड़के को जन्म दिया है, वल जारियतु लिकौनिहा तबअन लहा, और लड़की भी आजाद हो जाएगी इस वजह से कि वो मां के ताबे है, मां आजाद है तो बेटी भी आजाद है। बात समझ में आ रही है? मां ने पहले बेटे को जन्म दिया हो अगर तो मां आजाद हो गई, और इसके बाद इसने बेटी को जन्म दिया, तो एक आजाद औरत ने बेटी को जन्म दिया है तो वो भी क्या होगी, मां के ताबे होकर आजाद। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लि अन्न कुल्ल वाहिदतिन मिन्हुमा तातिकु फी हारिन, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक आजाद हो जाता है एक हालत के अंदर, वह हुआ मा इदा वलदतिल गुलाम अव्वला मर्रतिन, और उस वक्त है जब उसने लड़के को जन्म दिया है पहली मर्तबा में, अल उम्म बिशर्ती, मां आजाद होगी शर्त की वजह से कि उसने लड़के को पहले जन्म दिया तो आजाद हो गई, वल जारियतु लिकौनिहा तबअन लहा, और बांदी इसलिए आजाद होगी क्योंकि वो मां के ताबे है, इदिल उम्म हुर्रतुन हीना वलदा था, इसलिए क्योंकि मां आजाद थी जिस वक्त उसने इस लड़की को जन्म दिया, व तरिक्कु फी हालिन, रक्का या रिक्कु का माना गुलाम होना, व तरिक्कु फी हालिन, और दोनों जो है मां और बेटी जो है ये दोनों गुलाम है, फी हालिन एक हालत के अंदर, वह हुआ मा इदा वलदतिल जारियत अव्वलन, और ये उस वक्त है जब मां ने लड़की लड़की को पहले जन्म दिया ले आदमी शर्त, शर्त ना पाए जाने की वजह से कि शर्त नहीं पाई गई, उसने पहले लड़के को जन्म नहीं दिया। तो इस सूरत में दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाएगा। फयातिकुन निस्फ कुल्ली वाहिदा तिमिन हुमा, तो इन दोनों में से हर एक का निसफ आजाद हो जाएगा। वयसाफ इन निसफी, और निसफ के अंदर वो सही करेगा। अम्मल गुलाम यरिकु फिल हालैनी, बाकी लड़का जो है वो गुलाम ही रहेगा दोनों हालतों में, क्योंकि लड़के की पैदाइश शर्त थी मां की आजादी के लिए, और शर्त हमेशा मशरूत से पहले होती है। तो लड़के की पैदाइश पहले और मां की आजादी उसके बाद, तो जब लड़का पैदा हुआ उस वक्त मां अभी बांधी ही थी, तो उसका बेटा भी क्या होगा, गुलाम ही होगा। तो यहां लड़के को मां के ताबिया करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लड़के की पैदाइश वो शर्त है और वो मुकद्दम है भाई। तो कहते हैं अम्मल गुलाम यरिकु फिल हालैनी, तो लड़का जो है वो गुलाम होगा दोनों हालतों में। फलिहाद आ यकूनु अब्दन, तो वो गुलाम होगा। व इन दातिल उम्म अन्नल गुलाम हुल मौलूद अव्वलन, ये तो पहली सूरत थी। और दूसरी सूरत के मां ने दावा किया कि मैंने पहले लड़के को जन्म दिया है और आका उसका इनकार कर रहा है, और लड़की जो है अभी नाबालिगा है, यानी मां ने पैदाइश के बाद या लड़की के बालिग होने से पहले किसी वक्त दावा कर दिया, तो मां क्या दावा कर रही है कि पहले मैंने लड़के को जन्म दिया था और लड़की नाबालिगा है और आका इसका इनकार कर रहा है। तो इस सूरत में आका मुनकिर हुआ, जब मुनकिर हुआ तो उसके जिम्मे कसम है, वो कसम खाए कि उसके इलम में नहीं है कि लड़का पहले पैदा हुआ है। अगर वो कसम खा लेता है तो फिर ये मां और बेटी उसी तरह बांधी रहेंगे, और अगर वो कसम से इनकार करता है, मालूम हुआ वो बांधी के दावे का एतराफ कर रहा है। जब वो कसम से इनकार कर रहा है, मालूम हुआ वो बांधी के दावे का एतराफ कर रहा है, लिहाजा मां भी आजाद और उसके ताबे उसकी बेटी भी आजाद भाई। तो कहते हैं वह इनी दातिल उम्म, और अगर मां ने दावा किया कि अनल गुलाम हुअल मौलूद अव्वलन, के लड़का जो है वो पहले पैदा हुआ है। वह अनकरल मौला, और आका ने उसका इनकार किया। वल जारियतु सगीरतुन, और हाल यह है कि लड़की ना बालिगा है। फल कौल कौलहू माल यमीनी, तो वो कौल जो मोतबर है वो आका का कौल है, माल यमीनी कसम के साथ। ले इनकार ही शर्त अल इत्क, इसलिए क्योंकि वो आजादी की शर्त का इनकार कर रहा है। फइन हलफा, अगर आका ने कसम खा ली, लम यातिक वाहिदुम मिनहुम, तो इनमें से कोई एक भी आजाद नहीं होगा। व इन न काला, और अगर आका ने कसम से इनकार कर दिया, अतकतिल उम्मु वल जारियतु, तो मां भी आजाद हो जाएगी और वो लड़की भी आजाद हो जाएगी। लिअन्न दावल उम्म हुर्रियत सगीरत मुअतबरतुन, इसलिए क्योंकि मां का दावा करना हुर्रियत सगीरत नाबालिगा की आजादी का मुअतबरतुन, ये मुअतबर है। यहां पर देखो, जब मां कह रही है, मां कह रही है कि मैंने पहले लड़के को जन्म दिया था, तो गोया मां अपनी भी आजादी का दावा कर रही है और अपनी बेटी की आजादी का भी दावा कर रही है। और बेटी चूंकि नाबालिगा है, तो मां का दावा बेटी की आजादी के बारे में मुअतबर है, इसलिए क्योंकि इसमें बेटी का कोई नुकसान नहीं। अगर इसमें इस लड़की का कोई नुकसान होता, फिर मां का दावा मुअतबर नहीं था, लेकिन यहां बेटी का फायदा ही फायदा है, लिहाजा यहां बेटी के लिए भी मां का दावा मुअतबर है। तो मां सिर्फ अपने लिए दावा नहीं कर रही गोया, बल्कि अपनी बेटी के लिए भी दावा कर रही है। तो जब आका इनकार करेगा, तो मालूम हुआ वो इस के दावे का एतराफ कर रहा है, इकरार कर रहा है कि लड़का पहले पैदा हुआ था, तो ये दोनों आजाद हो जाएंगे। तो ये माना है लिअन्न दावल उम्मी हुर्रियत सगीरत मुअतबरतुन, इसलिए क्योंकि मां का दावा करना सगीरा की आजादी का ये मुअतबर है। लिकौनिहा नफअम महज़ा, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ नफा ही है, ये मां का ये दावा उस नाबालिगा के लिए सिर्फ नफा और फायदा ही है। फातू बिरा नुकूल फी हक हुर्रियती ही मां, नुकूल कहते हैं इनकार को। फातुबिरा नुकूल फी हक हुर्रियती ही मां, लिहाजा इस इनकार का एतबार किया जाएगा फी हक हुर्रियती ही मां, दोनों की आजादी के हक में। मां ने क्या कहा, मैंने पहले लड़के को जन्म दिया था, तो गोया मां अपनी आजादी के साथ अपनी बेटी की भी आजादी का दावा कर रही है। तो अगर आका कसम खा ले फिर तो मां भी उसी तरह बांधी रहेगी, वो नाबालिगा बेटी भी उसी तरह बांधी रहेगी। लेकिन अगर आका इनकार करता है तो कसम से इनकार गोया ये मुखालिफ के दावे का इकरार है, लिहाजा दावा साबित हो जाएगा और मां भी आजाद और बेटी भी आजाद। तो कहते हैं फातू बीरा नकूल फी हक हुर्रियत हिमा, लिहाजा आका का जो इनकार है उसका एतबार किया जाएगा मां और लड़की दोनों की आजादी के हक में। फातकता, तो दोनों आजाद हो जाएंगी। वलव कानतिल जारियतु कबीरतन, दूसरी सूरत, मां ने दावा किया कि मैंने लड़के को पहले जन्म दिया था और लड़की बालिगा हो चुकी है कई साल के बाद, अब मां ने दावा कर दिया, तो इस सूरत में याद रखो बेटी चूंकि बालिगा हो चुकी है लिहाजा उस मां का दावा बेटी की आजादी का दावा शुमार नहीं होगा, बेटी को अपना अलग दावा करना पड़ेगा। लिहाजा अगर मां ने दावा किया है बेटी बालिगा है और फिर आका इनकार कर देता है तो सिर्फ मां आजाद होगी, बेटी आजाद नहीं होगी भाई, क्योंकि आका कसम खाने से इनकार कर रहा है। तो मालूम हुआ वो दावे का एतराफ कर रहा है और दावा तो सिर्फ मां की आजादी का है तो वही साबित होगा, बेटी तो बालिगा है उसको तो अलग दावा करना पड़ेगा और उसने तो दावा नहीं किया, लिहाजा आका का इनकार उससे सिर्फ दावा साबित होगा, बेटी की आजादी साबित नहीं होगी। तो कहते हैं वलव कानतिल जारियतु कबीरतन, और अगर वो लड़की जो है वो बड़ी है यानी बालिगा है, वलम तद्दई शैअन, और हाल यह है कि बेटी ने कोई दावा नहीं किया, वल मसअलतु बिहालिहा, और यह मसला अपने हाल पर है यानी मां दावा कर रही है कि मैंने लड़के को पहले जन्म दिया था और आका इनकार कर रहा है, तो बाकी मसला उसी तरह है, सिर्फ बेटी बालिगा है और उसने कोई दावा नहीं किया। तो आतकतिल उम्म बिनुकूलिल मौला खासतन, तो मां जो है वो आजाद होगी आका के इनकार की वजह से, खास तौर पर सिर्फ मां आजाद होगी। दून अल जारियति, न के लड़की, लिअन्न दावल उम्मी गैर मुअतबरतिन फी हक्किल जारियतिल कबीरति, इसलिए क्योंकि बालिग लड़की के हक में मां का दावा मुअतबर नहीं, उसको अपना दावा खुद करना पड़ेगा। तो कहते हैं लिअन्न दावल उम्मी गैर मुअतबरतिन फी हक्किल जारियतिल कबीरति, इसलिए क्योंकि मां का दावा मुअतबर नहीं है बालिगा लड़की के हक में। वसिहतुन नुकूली तबतनी अल दावा, और इनकार का सही होना इसकी बुनियाद दावे पर होती है, इनकार के सही होने की बुनियाद किस पर है, दावे पर है। इनकार करेगा तो क्या साबित होगा, दावा, और दावा तो सिर्फ किसने किया है, मां ने, तो इसे बेटी की आजादी साबित नहीं होगी। यह माना है वसेहतुन नुकूली, और इनकार का सही होना यानी आका का कसम से इनकार करना। तो कहते हैं वसेहतुन नुकूली तबतनी अल दावा, और इनकार का सही होना इसकी बुनियाद दावे पर होती है। फलम यजहर फी हक्किल जारियती, लिहाजा यह इनकार जाहिर नहीं होगा लड़की के हक में क्योंकि उसने दावा ही नहीं किया भाई। दावा किया होता तो फिर कसम से इनकार से उस लड़की का दावा भी साबित हो जाता। तो कहते हैं फलम यजहर फी हक्किल जारियती, लिहाजा आका का यह इनकार लड़की के हक में जाहिर नहीं होगा। वलव कानतिल जारियतुल कबीरतु हियल मुद्दईयतु लिसबकी विलादतिल गुलाम, एक और सूरत भाई कि दावा करने वाली वो लड़की है, बालिग होने के बाद उसने दावा किया और आका ने कसम से इनकार कर दिया, तो इस सूरत में सिर्फ ये लड़की आजाद होगी, मां आजाद नहीं, क्योंकि आका का इनकार सिर्फ दावे के हक में मुअतबर है और दावा तो सिर्फ बेटी ने किया था तो सिर्फ बेटी का दावा साबित हुआ, बेटी आजाद हो जाएगी, लेकिन मां का तो दावा है ही नहीं, तो इस इनकार से मां की आजादी साबित नहीं होगी। कहते हैं वलव कानतिल जारियतुल कबीरतु हियल मुद्दईयतु लिसबकी विलादतिल गुलामी, और अगर वो बालिगा लड़की वही दावा करने वाली है लिसबकी विलादतिल गुलामी, लड़के की वलादत के मुकदम होने की, वल उम्मु साकिततुन, और हाल यह है कि मां खामोश है यानी उसने दावा नहीं किया, तो यसबुतु इत्कुल जारियति बिनुकूलिल मौला, तो इस सूरत में लड़की की आजादी साबित हो जाएगी आका के इनकार की वजह से। दून अल उम्मी, ना के मां की आजादी, लिमा कुल ना, उस वजह से जो हमने कही कि इनकार के सही होने की बुनियाद दावे पर है और मां ने तो यहां कोई दावा ही नहीं किया। भाई कहते हैं वह तहलीफ अलल इल्मी फी मा ज़करना, भाई मैंने आपको बतलाया था कि आका से क्या कसम ली जाएगी आदम इलम पर, कि वो कसम खाएगा कि मुझे इस बात का इलम नहीं है कि लड़का पहले पैदा हुआ है। तो याद रखो जब भी किसी दूसरे के फेल पर किसी से कसम ली जाए, एक आदमी से कसम ली जा रही है लेकिन वो उसके अपने फेल पर कसम नहीं है किसी दूसरे के फेल पर है, तो दूसरे के फेल पर कतई कसम नहीं खिलाई जाती कि वो कसम खाए वल्लाह ऐसा नहीं हुआ। भाई वो फेल तो किसी और ने किया है, ये कतई कसम खा ही नहीं सकता, ये सिर्फ अपने इलम पर कसम खाएगा कि मेरे इलम में नहीं है कि ऐसा हुआ है। तवज्जो है, तो गैर के फेल पर कतई कसम नहीं खिलाई जाती बल्कि वहां इलम पर कसम खिलवाई जाती है। तो यहां बच्चे को जन्म देना ये तो बांदी का फेल है, तो ये गैर का फेल हुआ तो आका को उसके इलम पर कसम दी जाएगी कि कसम खाकर कहो कि तुम्हें इलम नहीं है। भाई तो कहते हैं वह तहलीफ अलल इल्मी फी मा ज़करना, और जो कसम दी जाएगी वो इलम पर होगी उस चीज में जो हमने जिक्र किया, इन इन मसलों में जहां जहां कसम आएगी वो इलम पर कसम होगी। तो कहते हैं वह तहलीफ अलल इल्मी फी मा ज़करना, और कसम जो खिलाई जाएगी वो इलम पर होगी उन सूरतों में जो हमने जिक्र की, लिअन्नहु इस्तिहलाफुन अला फ़िअलिल ग़ैरी, इसलिए क्योंकि ये कसम का तलब करना है किसी दूसरे के फेल पर। وبهذا القدر يعرف ما ذكرنا من الوجوه في كفاية المنتهي وبهذا القدر اور اتنی مقدار کے ذریعے يعرف ما ذكرنا معلوم ہو جاتا ہے جان لیا جاتا ہے ما ذكرنا وہ جس کو ہم نے ذکر کیا من الوجوه یعنی وجوه یہ جو ہم نے بیان کر دیا یہ جو ہدایہ کے اندر کہتے ہیں ہم نے صورتیں ذکر کر دیں اتنی مقدار سے उन सूरतों का भी पता चल जाता है जो हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र की हैं। भाई देखो यहां कुल सूरतें बनती हैं छह, और यहां साहिबे हिदाया ने चार सूरतें जिक्र फरमाई, तो दो सूरतें यहां जिक्र नहीं फरमाई, अलबत्ता वो किफायतुल मुंतही के अंदर उन्होंने जिक्र की हैं। तो साहिबे हिदाया फरमाते हैं कि हमने जो सूरतें जिक्र कर दी इनके जरिए जो बाकी सूरतें रह गई थी उनका हुक्म भी मालूम किया जा सकता है। यहां चार सूरतें किस तरह जिक्र की, एक सूरत यह है कि किसी एक को भी इलम नहीं है जी। कि पहले लड़का पैदा हुआ है या लड़की, ना बांदी को पता है और ना आका को पता है, तो किसी को इलम नहीं है कि पहले लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई। भाई और दूसरी सूरत यह है कि मां ने दावा किया कि लड़का पहले पैदा हुआ और आका इनकार कर रहा है और हाल यह है कि लड़की नाबालिगा है, यह दूसरी सूरत है। तीसरी यही सूरत है, मां ने दावा किया है कि लड़का पहले पैदा हुआ, आका इनकार कर रहा है और लड़की बालिगा है, यह तीन सूरतें हो गई। चौथी सूरत यह है कि लड़की ने दावा किया है मां खामोश है, लड़की ने बालिगा होने के बाद दावा किया और मां खामोश है, इस तो इस सूरत में सिर्फ लड़की का दावा साबित होगा अगर आका इनकार करेगा। भाई और दो सूरतें जिक्र नहीं की, एक ये सूरत कि जब सब इत्तेफाक करें कि लड़की पहले पैदा हुई है, और एक ये सूरत जब सब इत्तेफाक करें कि लड़का पहले पैदा हुआ है। एक सूरत तो बयान कर दी, सबका इत्तेफाक है आदम इलम पर, हर एक कह रहा है हमें इलम नहीं, तो दो सूरतें यह है कि इलम पर इत्तेफाक है, उस इलम पर इत्तेफाक में एक सूरत यह कि लड़की पहले पैदा हुई। अगर लड़की पहले पैदा हुई तो मसला वाज़े है, शर्त पूरी नहीं हुई, शर्त तो क्या थी कि लड़का पहले पैदा हुआ तो तुम आजाद हो, तो जब लड़की पहले पैदा हुई है तो मां भी आजाद नहीं, जब मां आजाद नहीं तो उसने बाद में जब बेटी को जन्म दिया तो वो बांदी की बेटी है, तो वो भी बेटी भी बांदी, कोई भी आजाद नहीं, और लड़का तो किसी सूरत में भी आजाद नहीं, तो सब उसी तरह गुलाम रहेंगे। और अगर सब ने इत्तेफाक कर लिया कि लड़का पहले पैदा हुआ था तो फिर इस सूरत में लड़का तो गुलाम ही है, अलबत्ता मां भी आजाद और बेटी भी आजाद। तो ये दो सूरतें चूंकि वाजह थी उनको साहिबे हिदाया ने जिक्र नहीं फरमाया, अलबत्ता उनकी तरफ इशारा कर दिया। तो कहते हैं वह बिहाद अल कदरी यो अरफ मा ज़करना मीनल वजूह ही, ये मीनल वजूह बयान है मा ज़करना, वो जो हमने जिक्र किया, मीनल वजूह यानी सूरतें। कहते हैं वबिहाद अल कदरी यो आरफ मा ज़करना मिनल वुजूही फी किफायतिल मुंतहिम, इतनी मिकदार के जरिए उन सूरतों को भी जाना जा सकता है जो हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र की है। तर्जमा समझ में आया, फिर देख लें एक दफा तर्जमा, वबिहाद अल कदरी यो आरफ मा ज़करना मिनल वुजूही फी किफायतिल मुंतही, और इतनी मिकदार के जरिए जाना जा सकता है उन सूरतों को भी जिनको हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र किया है। तो यहां की सानियात का जिक्र आया। याद रखना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताबें दो किस्म पर हैं, कुछ को जाहिरे रिवायत कहते हैं और बाकी को नवादिर कहते हैं। जाहिरे रिवायत आप जानते हैं छह किताबें हैं भाई, जामे सगीर, जामे कबीर, सियरे सगीर, सियरे कबीर, मबसूत और ज्यादात। तो ये किताबें जो हैं जाहिरे रिवायत कहलाती हैं, फिर इनकी रिवायत बड़ी जाहिर है। वजह यह कि इन किताबों को इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से नकल करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, यानी तवातुर के हद तक पहुंचे हुए हैं, लिहाजा मालूम हुआ यह कतई तौर पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताबें ही हैं, इनमें किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं हुआ। जबकि बाकी किताबें जो हैं वो इस तरीके पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से मनकूल नहीं है, उनको नकल करने वाले इतने ज्यादा नहीं है, तो लिहाजा वो नवादिर कहलाती हैं भाई। नवादिर जमा है नादिर उनकी या नादिरतुन की भाई, नादिरुन की जमा भी नवादिर आती है और नादिरतुन की जमा भी नवादिर आती है। तो नवादिर जो हैं उनके फिर कई नाम हैं, बाज जो हैं वो किसानियात कहलाती हैं, बाज जो हैं वो जुर्जानियात कहलाती हैं, बाज जो हैं वो रकियात कहलाती हैं, बाज जो हैं वो हारूनियात वगैरह कहलाती हैं। किसानियात, जुर्जानियात, हारूनियात, मरकियात वगैरह भाई, और ये सब निस्बतें हैं इनके नकल करने वालों की तरफ या उस इलाके की तरफ जिसमें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने ये मसाइल लिखवाए। बाज़ औक़ात एक इलाके के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कुछ मसाइल लिखवाए उलमा को, तो वो उसी इलाके की निस्बत से मशहूर हो गए। जैसे रकियात भाई, ये रक़ा शहर के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मसाइल लिखवाए थे उलमा को, तो ये रकियात के नाम से मशहूर हैं। इसी तरह हारूनियात को हारून नाम के आलिम फकीह नकल करते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से, तो ये हारूनियात कहलाती हैं। इसी तरह जुर्जानियात हैं, इसी तरह जो है वो केसानियात हैं। तो ये नाम जो हैं ये उन इलाकों की निस्बत से इन मसाइल का नाम है या इनको नकल करने वालों की निस्बत से इनका नाम है, तो ये नवादिर में से हैं। तो नवादिर के अंदर केसानियात के अंदर इमाम सरखसी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि यहां जो मतन के अंदर जो मसला जिक्र है इसका यह जवाब नहीं है कि निसफ बांदी और निसफ लड़की आजाद होगी, बल्कि इस सूरत में आका पर कसम आएगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, قال واذا شهد رجلان على رجل انه اعتق احد عبديه فالشهاده باطله عند ابي حنيفه رحمه الله الا ان يكون في وصيه استحسانا ذكره في كتاب العتاق। सूरत मसला ये, दो आदमियों ने गवाही दी एक आदमी के खिलाफ कि इसने अपने दो गुलामों में से एक गैर मुअय्यन को आजाद किया है। दो आदमियों ने एक आदमी के खिलाफ यानी आका के खिलाफ गवाही दी कि इस आका ने अपने एक गैर मुअय्यन गुलाम को आजाद किया है दो गुलामों में से। यानी वो कहते हैं कि आका ने अपने दो गुलामों के बारे में कहा था आहादुहुमा हुर्रुन, या उनके गुलामों के सामने कहा था आहादुकुमा हुर्रुन, तुम दोनों में से एक आजाद। ये दो गवाह पेश हुए, तो इस मसले में दो गवाह भी मौजूद हैं। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस गवाही को नहीं सुना जाएगा, ये शहादत बातिल है भाई। भाई देखो, पीछे जो मसले जिक्र हुए वहां पर आका इकरार कर रहा है कि हां मैंने ये कहा है जी। आका ने इकरार किया कि मैंने ये कहा है, हां अलबत्ता बयान से पहले ही वो मर गया जी। वो बयान से पहले मर गया, या इकरार तो कर रहा है और जिंदा है, तो फिर काजी मजबूर करेगा कि भाई जब तुम इकरार कर रहे हो तुमने को आजाद किया है तो बतलाओ बयान करो किसको तुमने आजाद किया है। लेकिन यहां सूरत यह है कि आका इनकार कर रहा है, और दो गवाह कहते हैं कि इसने अपने दो गुलामों में से एक गैर मुअय्यन को आजाद किया है, तो यह शहादत इमाम साहब के नजदीक बातिल है, इस गवाही को नहीं सुना जाएगा। कहते हैं काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, वह ईदा शहीदा रजुलानी अला रजुलिन, जब दो आदमियों ने एक आदमी के खिलाफ गवाही दी कि अन्नहु आतका अहदा अबदही, कि इसने अपने दो गुलामों में से एक को आजाद कर दिया है, फशहादतु बातिलतुन इंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह, तो यह गवाही बातिल है इमाम साहिब के नजदीक। भाई वजह भी अच्छी तरह यही समझ लें, याद रखो इमाम साहब के नजदीक ये जो इताक है ये हकुल अब्द है, ये बंदे का हक है, क्योंकि इस इताक की वजह से गुलाम को आजादी मिली, वो अपनी जात का मालिक बन गया, उसको हर तरह के तसरुफात का इख्तियार मिल गया, अब वो बैअ कर सकता है, वो अपना निकाह कर सकता है, वो तिजारत वगैरह कर सकता है, वो शहादत दे सकता है, वो काजी बन सकता है। तो इससे पहले तो गुलाम के अंदर ये कुव्वत नहीं थी, तो उसको कुव्वत हासिल हो गई, तो ये हकुल अब्द है। ये आजादी क्या है? ये आजादी जो है हकुल अब्द है, ये इताक जो है ये हकुल अब्द है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि जो गुलाम की आजादी है ये हक शरीयत है, ये अल्लाह का हक है, ये शरीयत का हक है। वजह यह कि ये जो इताक है ये गुलाम के कबूल करने का मोहताज नहीं, गुलाम के कबूल करने का मोहताज नहीं। आका अपने गुलाम से कह दे तुम आजाद हो तो गुलाम फौरन आजाद हो जाता है, चाहे गुलाम कबूल करे चाहे कबूल ना करे। मालूम हुआ यह हकुल अब्द नहीं, अगर यह हकुल अब्द होता, गुलाम का हक होता, तो फिर तो यह गुलाम के कबूल पर इसका दारोमदार होता, गुलाम कबूल करता तो आजाद होता, गुलाम कबूल ना करता तो आजाद ना होता। तो यह हक शरा है, क्योंकि इसमें गुलाम के कबूल का कोई दखल नहीं है, और नीस गुलाम के रद्द करने से भी यह रद्द नहीं होता, यह भी इस बात की दलील है कि यह गुलाम का हक नहीं है, क्योंकि अगर यह गुलाम का हक होता तो गुलाम के रद्द करने से और इनकार करने से यह रद्द हो जाता। और नीस इताक जो है उसको शर्त के साथ भी मुअल्लक किया जा सकता है, ये इस बात की दलील है कि यह हक शरा है, हकुल अब्द नहीं। अगर हकुल अब्द होता तो फिर इसको शर्त के साथ मुअल्लक नहीं किया जा सकता था। जैसे बैअ जो है दो बंदों का मामला है, यह हकुल अब्द है भाई, लिहाजा बैअ को किसी शर्त के साथ मुअल्लक नहीं किया जा सकता कि अगर तुमने यह काम कर लिया तो बैअ हो गई, अगर ना किया तो बैअ ना हुई। तो बैअ क्या है? हकुल अब्द है, लिहाजा उसको शर्त के साथ मुअल्लक नहीं किया जा सकता, लेकिन इताक को शर्त के साथ मुअल्लक किया जा सकता है। मालूम हुआ यह हक शरीयत है भाई। तो इन सब चीजों से मालूम होता है कि इताक शरीयत का हक है, बंदे का हक नहीं। तो साहिबैन के नजदीक इताक जो है वह हक शरा है भाई, जबकि इमाम साहिब के नजदीक इताक जो है वह हकुल अब्द है। और याद रखो हकुल अब्द के अंदर दावे के बगैर गवाही को नहीं सुना जाता, और हकुल्लाह के अंदर दावा जरूरी नहीं, दावे के बगैर भी गवाही को सुना जाएगा। जाब्ता क्या है? हकुल अब्द के अंदर दावा जरूरी है भाई, जब बंदे का हक है तो कोई दावा करने वाला चाहिए, फिर ही गवाही को सुना जाएगा। एक आदमी आकर कहता है मेरा यह हक है, मुझे यह हक दिलाया जाए, तो फिर गवाही को सुना जाएगा। अगर दावा करने वाला ही कोई नहीं है तो फिर गवाही बातिल है। और हकुल्ला के अंदर दावा जरूरी नहीं, हकुल्ला के अंदर दावा जरूरी नहीं। जैसे हकुल्ला है कि हर अजनबी औरत आदमी पर हराम है, हर अजनबी औरत आदमी पर हराम है, लिहाजा अब यह औरत का हराम होना यह हकुल्ला है भाई, अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है, लिहाजा इसके अंदर अगर लोग आकर गवाही देते हैं कि फुला ने जिना किया है, अब यहां देखो मुद्दाई कोई नहीं, लेकिन फिर भी गवाही को सुना जाएगा, और चार गवाह हो गए तो जिना साबित हो जाएगा। तो जाब्ता क्या हुआ कि हकुल अब्द में दावे का होना जरूरी और हकुल्लाह में दावे का होना जरूरी नहीं है भाई। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जब आका ने अपने दो गुलामों में से गैर मुअय्यन को आजाद किया है तो यह हकुल अब्द है, और हकुल अब्द के लिए क्या चाहिए? मुद्दाई चाहिए, और यहां कोई मुद्दाई नहीं है। हत्ता कि ये दोनों गुलाम भी अगर काजी के पास चले गए कि काजी साहब हमारे आका ने हमें कहा था अहदुकुमा हुर्रुन और ये दो गवाह भी मौजूद हैं काजी साहब, काजी फिर भी गवाही नहीं सुनेगा, फिर भी गवाही क्योंकि मुद्दाई नहीं है। आप कहेंगे मुद्दाई है तो ये दोनों गुलाम हैं, नहीं भाई ये मुद्दाई नहीं है, आका ने दोनों को आजाद किया है या एक को, आका ने एक को आजाद किया है लिहाजा एक मुद्दाई बन सकता है, लेकिन कौन सा वाला मुद्दाई बनेगा पहला या दूसरा, एक भी मुतायन नहीं है, ना पहला मुद्दाई बन सकता है ना दूसरा, पहला तब मुद्दाई बनता अगर आका ने उसे आजाद किया होता, दूसरा तब मुद्दाई बनता अगर आका ने उसे आजाद किया होता, तो लिहाजा यहां मुद्दाई मजहूल हो गया
जी।
मुद्दाई क्योंकि आका ने एक को आजाद किया है दोनों को नहीं, और लिहाजा दोनों आ जाएं तो दोनों को आप मुद्दाई करार नहीं दे सकते, और एक भी आ जाए उसको भी मुद्दाई करार नहीं दे सकते क्योंकि आका ने कतई तौर पर उसी को तो नहीं आजाद किया, आका ने तो गैर मुअय्यन को आजाद किया है, लिहाजा कोई एक भी आएगा तो वो भी मुद्दाई नहीं बन सकता और दोनों आ जाएं तो ये भी मुद्दाई नहीं बन सकते, तो यहां मुद्दाई मजहूल है। जब मुद्दाई मजहूल हो तो फिर गवाही को नहीं सुना जाता, तो इमाम साहब फरमाते हैं गवाही को नहीं सुना जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर देखिए तर्जमा, قال امام محمد رحمه الله جامع صغير میں فرماتے ہیں واذا شهد رجلان على رجل انه اعتق احد عبديه, جب دو آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دی کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کر دیا ہے, فالشهاده باطله عند ابي حنيفه رحمه الله, تو یہ گواہی باطل ہے امام صاحب کے نزدیک, اس کو نہیں سنا جائے گا اور نہ اس پر فیصلہ کیا جائے گا, الا ان يكون في وصيه, مگر یہ کہ یہ گواہی وصیت کے بارے میں ہو, کس میں ہو, वसीयत में, मसलन मरहजुल मौत में एक आदमी ने कहा कि मेरे दोनों गुलामों में से एक आजाद है, और आपने पढ़ा है कि मरहजुल मौत में एताक जो है वो वसीयत के दर्जे में है, ये वसीयत के दर्जे में है, तो इस सूरत के अंदर इस्तेहसानन इस बयना को सुना जाएगा, इस्तेहसानन इस गवाही को सुना जाएगा, और इसकी वजह आगे साहिबे हिदाया बयान फरमाएंगे, आप यही समझ लें अच्छी तरह। भाई आका जब दो गुलामों में से गैर मुअय्यन को आजाद करता है तो मुद्दई मजहूल है लिहाजा गवाही नहीं सुनी जाएगी
जी।
लेकिन जब आका मरजुल मौत में यह कहता है और मरजुल मौत के अंदर जो है यह वसीयत के हुक्म में है, और वसीयत के अंदर याद रखो मुद्दाई मैयत होती है, वसीयत मौत के बाद नाफिज होती है और उसमें मुद्दाई मैयत होती है, मैयत तकाजा करती है कि मेरी वसीयतों को नाफिज करो क्योंकि इन वसीयतों का फायदा मैयत को पहुंचेगा, अगर उसने फुकारा के लिए या किसी के लिए कोई माल देने का कहा है तो लिहाजा इसका फायदा चूंकि मैयत को पहुंचेगा तो इसमें मुद्दाई मैयत है, और मैयत का अगरचे इंतकाल हो चुका है लेकिन या तो वारिस जो हैं वो उसके कायम मकाम और उसके खलीफा बन जाएंगे, उसके नाइब बन जाएंगे, या अगर कोई उसने वसी मुकर्रर किया था, कोई जिम्मेदार मुकर्रर किया था, तो लिहाजा इस सूरत में मुद्दाई मालूम है। जब वसीयत आ गई तो वसीयत में मुद्दाई कौन है, मैयत है, और इस वक्त उसका खलीफा और नाइब जो है वो वारिस या वसी मौजूद है, लिहाजा मुद्दाई मौजूद है, जब मुद्दाई मौजूद है तो अब गवाही सुनी जाएगी। और एक और बात भी याद रखना कि आका अगर अपने दो गुलामों में से गैर मुअय्यन को आजाद करता है और आका भी तस्लीम कर रहा है कि हां मैंने इन दोनों में से एक को आजाद किया था, तो फिर आका को मजबूर करेंगे जब तक वो जिंदा के बताओ किसको तुमने आजाद किया है, लेकिन अगर आका मर जाए तो फिर उसके बाद यह आजादी दोनों गुलामों में फैल जाएगी, तो निसफ एक आजाद होगा और निसफ दूसरा आजाद होगा। तो लिहाजा वसीयत के मामले में मुद्दई मालूम है कि वह मैयत है, लिहाजा इसलिए गवाही सुनी जाएगी इस्तेहसानन। कियास तो यह तकाजा करता है गवाही नहीं सुननी चाहिए क्योंकि मुद्दई मजहूल है, आका ने किसी एक मुअय्यन को आजाद नहीं किया बल्कि गैर मुअय्यन को आजाद किया है, तो मुद्दई कौन हुआ, मजहूल हो गया, और मजहूल मुद्दाई हो तो फिर दावा नहीं हो सकता, दावे के लिए कोई मालूम मुद्दाई चाहिए भाई। तो कियास तकाजा करता है कि यह दावा न सुना जाए, लेकिन इस्तेहसानन यह दावा सुना जाएगा, यहां मैयत जो है उसको मुद्दाई करार दिया जाएगा। या दूसरी वजह इस्तेहसान की यह है कि मौत के बाद यह आजादी दोनों गुलामों में फैल जाएगी, जब दोनों में फैल जाएगी तो अब दोनों मुद्दाई बन गए, اب مدعی معلوم ہو گیا دونوں ہیں لہذا اب بھی گواہی کو سنا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. وصیت کے مسئلے میں گواہی کو سنا جائے گا لیکن غیر وصیت میں نہیں, اور وصیت میں بھی استحسانن سنا جائے گا. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے وصیت کے اندر بھی غیر معین کے عطاق پر گواہی کو نہ سنا جائے کیونکہ مدعی مجہول ہے, لیکن استحسانن اس گواہی کو سنا جائے گا. اور اس کی دو وجہیں ذکر کریں گے صاحب ہدایہ. ایک وجہ کیا کہ مدعی وہ میت ہے بھائی, اور اس کے نائب موجود ہے, وصی ہے یا وارث ہیں, اور یا یہ دونوں غلام ہی مدعی بن جائیں گے کیونکہ موت کے بعد یہ عطاق پھیل جائے گا دونوں کے اندر. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں الا ان یکون فی وصیت, مگر یہ کہ یہ اعتاق جو ہے وصیت کے اندر ہو, یعنی مرض الموت میں ہو, تو پھر شہادت باطل نہیں ہوگی استحسانن, اور یہ استحسانن ہے. ذکرہ فی کتاب العطاق, اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب العطاق کے اندر ذکر فرمایا ہے, یعنی مبسوط کی کتاب العطاق میں. وَإِن شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ, اور اگر ان دو آدمیوں نے گواہی دی کہ أَنَّهُ طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ, کہ اس شخص نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دی ہے, جازت الشہادت, تو پھر گواہی جائز ہے. کیونکہ طلاق کی وجہ سے عورت خاوند کے لیے حرام ہوگی. طلاق کی وجہ سے عورت کیا ہوگی؟ خاوند کے لیے حرام ہوگی, اور یہ حق اللہ ہے بھائی. تحریم الفرج, شرمگاہ کا حرام ہونا, یہ حق اللہ ہے. دیکھو میں نے ذکر کیا کہ کسی بھی شخص کے لیے اجنبی عورت حرام ہے, اور یہ حق العبد نہیں ہے عورت کا حرام ہونا, بلکہ یہ حق اللہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا دو بیویوں میں سے ایک غیر معین کو طلاق دی, تو یہ حق اللہ ہے بھائی, اور حق اللہ کے اندر دعویٰ ضروری نہیں, اس کے بغیر بھی گواہی کو سنا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں وہ ان شہیدا انہو طلق احدا نسائہ, اور اگر ان دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنی دو بیوی میں سے ایک کو طلاق دی ہے, جازت شہادت, تو گواہی جائز ہے. ویجبر الزوج علی ان یطلق احداہن, اور خاوند کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دے. وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ, اور یہ مسئلہ بالاتفاق ہے ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ تعالی, اور صاحبین فرماتے ہیں الشہادت فی العتق مثل ذلك, کہ آزادی کے اندر جو گواہی ہے وہ بھی اسی کے مثل ہے. جیسے طلاق کے مسئلے میں بغیر دعوے کے بھی شہادت کو سنا جا سکتا ہے, اسی طرح اعتاق کے مسئلے کے اندر بھی بغیر دعوے کی بھی گواہی کو سنا جا سکتا ہے. لہذا صاحبین فرماتے ہیں اگر دو گواہ آ گئے کہ اس آقا نے اپنے ان دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے, تو اس صورت میں یہ گواہی سنی جائے گی, اور آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ ان دو میں سے اب ایک کو آزاد کر دے. وَأَصْلُ هَذَا, اور اصل اس اختلاف کی یہ ہے کہ ان شہادت علی عتق العبد لا تقبل من غیر دعوی العبد, کہ غلام کی آزادی پر جو گواہی ہے لا تقبل, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, من غیر دعوی العبد, غلام کے دعوے کے بغیر, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کے نزدیک. غلام کی آزادی پر جو شہادت ہو اس کو غلام کے دعوے کے بغیر نہیں سنا جائے گا, کیونکہ غلام کی آزادی یہ حق العبد ہے بھائی. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے. وَأَصْلُ هَذَا, اور ضابطہ اس اختلاف کا وہ یہ ہے کہ ان شہادت علی عتق العبد, کہ غلام کی آزادی پر جو گواہی ہے, لا تقبل من غیر دعوی العبد, وہ غلام کے دعوے کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کے نزدیک, وعندہما تقبل, اور صاحبین کے نزدیک قبول کیا جائے گا. وَالشَّهَادَةُ عَلَىٰ عِتْقِ الْأَمَتِ وَالطَّلَاقِ الْمَنْكُوحَةِ مَقْبُولَةٌ, اور باندی کی آزادی پر, اور اسی طرح منکوحہ بیوی کی طلاق پر جو گواہی ہے, مقبولتن, وہ مقبول ہے, یعنی اس کو سنا جائے گا, من غیر دعوی بالاتفاقی, بغیر دعوے کے ہی, بالاتفاق, یعنی اس میں ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے. تو حاصل کلام کیا کہ غلام کی آزادی پر جو شہادت ہے اس کو بغیر دعوے کے نہیں سنا جائے گا امام صاحب کے نزدیک, یعنی غلام کا دعویٰ ضروری ہے, اور صاحبین کے نزدیک غلام کا دعویٰ ضروری نہیں. جبکہ باندی کی آزادی اور منکوحہ کی جو طلاق ہے اس میں بالاتفاق دعوے کی ضرورت نہیں, دعوے کے بغیر بھی شہادت کو سنا جائے گا. تو کہتے ہیں والشہادت علی عتق الامۃ وطلاق المنکوحۃ مقبولۃ من غیر دعوی بالاتفاق، اور باندی کی آزادی اور منکوحہ بیوی کی طلاق پر جو شہادت ہو وہ مقبول ہے بغیر دعوے کے ہی، بالاتفاق، والمسألۃ معروفۃ، اور یہ مسئلہ مشہور ہے یعنی سب کو معلوم ہے. وَإِذَا كَانَ دَعْوَ الْعَبْدِ شَرْطًا عِنْدَهُ، اور جب غلام کا دعویٰ شرط ہے امام صاحب کے نزدیک، لا يتحقق في مسألة الكتاب، تو دعویٰ نہیں پایا جا رہا کتاب کے مسئلے میں. یعنی جب غیر معین غلام کو آزاد کیا تو مدعی مجہول ہو گیا، گویا مدعی ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں لا يتحقق في مسألة الكتاب، تو دعویٰ نہیں پایا جا رہا کتاب کے مسئلے میں. لأن الدعوى من المجهول لا يتحقق، اس لیے کیونکہ مجہول کی طرف سے دعویٰ نہیں ہو سکتا. فلا تقبل الشهادة، لہذا اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. وعندهما ليس بشرط، اور صاحبین کے نزدیک دعویٰ شرط نہیں ہے. فتقبل الشهادة، تو گواہی کو قبول کیا جائے گا. وإن انعدم الدعوى، اگرچہ دعویٰ معدوم ہو، اگرچہ دعویٰ نہ ہو. اما فی الطلاق فعدم الدعوى، تو باقی جو طلاق ہے اس کے اندر دعوے کا نہ ہونا، لا یوجب خللا فی الشهادتی، یہ گواہی کے اندر کوئی خرابی ثابت نہیں کرتا، اس کی وجہ سے گواہی میں کوئی خلل اور خرابی نہیں آتی. لأنها ليست بشرط فيها، اس لیے کیونکہ طلاق کے مسئلے کے اندر یہ دعویٰ شرط نہیں ہے. ولو شہید انه اعتق احدى امتيه، بھائی میری کتاب میں ہے ولو شہید، مفرد کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے، دو آدمی گواہ کم از کم چاہیے پھر ہی دعویٰ ثابت ہوگا. تو ہدایہ کے دیگر نسخوں میں یہاں تثنیہ کا صیغہ موجود ہے. بھائی کہتے ہیں ولو شہیدا، اور اگر ان دو آدمیوں نے گواہی دی، انہ اعتق احدا امتیہ، کہ اس آدمی نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک کو آزاد کر دیا ہے، لا تقبل عند ابی حنیفۃ رحم اللہ، تو بھی یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک. وَإِن لَّمْ يَكُنِ الدَّعْوَى شَرْطًا فِيهِ، اگرچہ اس کے اندر دعویٰ شرط نہیں ہے. بھائی اوپر آپ کو مسئلہ بتلا دیا کہ غلام کی آزادی کے اندر دعویٰ شرط ہے، باندی کی آزادی کے اندر دعویٰ شرط نہیں. باندی کی آزادی میں بالاتفاق ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک دعویٰ شرط نہیں، لیکن اگر گواہوں نے کہا کہ اس نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے، تو پھر اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں یہاں پر گواہی کو نہیں سنا جائے گا، یہاں پر گواہی کو نہیں سنا جائے گا. وجہ یہ کہ جیسے طلاق کا مسئلہ تھا، طلاق کے مسئلے میں گواہی کو سنا جائے گا. کیوں سنا جائے گا؟ کیونکہ وہ حق اللہ ہے، حق شریعت ہے. بھائی حق اللہ کس طرح ہے؟ کیونکہ اس میں طلاق کی وجہ سے تحریم الفرج آئے گا، اس عورت کی شرمگاہ اس مرد پر حرام ہو جائے گی، اور تحریم الفرج جو ہے، شرمگاہ کا حرام ہونا، یہ حق اللہ ہے، یہ حق شرع ہے. جب یہ حق شرع ہے تو طلاق کے مسئلے میں دعویٰ ضروری نہیں، بغیر دعوے کے بھی گواہی کو سنا جا سکتا ہے. تو باندی کا جو مسئلہ ہے، باندی کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کی مشابہت، اس کی مشابہت طلاق کے ساتھ بھی ہے. باندی کی جو آزادی ہے اس میں بھی، جب باندی آزاد ہو جائے گی تو آقا کی ملکیت ختم، جب ملکیت ختم تو وہاں بھی تحریم الفرج جائے گا، وہاں بھی تحریم الفرج جائے گا، اور تحریم الفرج یہ تو حق شرع ہے، لہذا اس میں دعوے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی مشابہت وہ غلام کی آزادی کے ساتھ ہے، لہذا یہاں بھی گواہی کو نہیں سنا جائے گا بغیر دعوے کے. بھائی دیکھیے، بھائی صاحب ہدایہ اس کو اور بہتر الفاظ میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمائیں گے. تو کہتے ہیں ولو شہیدا انہ اعتق احدا امتیہ لا تقبل عند ابی حنیفۃ رحم اللہ، اور اگر ان دو آدمیوں نے گواہی دی کہ اس شخص نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک کو آزاد کر دیا ہے، تو یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی امام صاحب کے نزدیک. وَإِن لَّمْ يَكُنِ الدَّعْوَى شَرْطًا فِيهِ، اگرچہ باندی کے حق میں دعویٰ شرط نہیں ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يُشْتَرَطُ الدَّعْوَى، کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ دعوے کی شرط نہیں لگائی جا سکتی. لما انہ یتضمن تحریم الفرج، اس لیے کیونکہ یہ جو باندی کی آزادی ہے یہ تحریم الفرج کو متضمن ہے، یہ तहरीमुल फर्ज इसकी वजह से उस बांदी की शर्मगाह उस आका पर हराम हो जाएगी, तो बांदी की आजादी तहरीमुल फर्ज को मुतजमीन है। फशाबहत तलाक, तो ये तलाक के मुशाबे हो गई, ये बांदी की आजादी तलाक के मुशाबे हो गई। वल इत्कुल मुबहम ला यूजिबु तहरीम अल फर्ज इंदहू, और इत्क मुबहम, मुबहम आजादी, आका ने क्या कहा है, इहदाकुमा हुर्रतुन, तुम दोनों में से एक आजाद है, तो आका ने एक मुबहम बांदी को आजाद किया है, एक गैर मुअय्यन बांदी को आजाद किया है, और गैर मुअय्यन बांदी को आजाद करने की वजह से कोई एक बांदी भी अभी आका पर हराम नहीं हुई भाई। तो यहां तहरीम फर्ज नहीं आया जी। जब तहरीम फर्ज नहीं आया तो मालूम है इसकी मुशाबहत गुलामों वाली सूरत के साथ है, और गुलामों वाली सूरत के अंदर तो दावे के बगैर गवाही नहीं सुनी जाती थी, तो यहां भी जब तहरीम फर्ज नहीं है यह भी गुलामों के मसले की तरह हुआ, तो लिहाजा यहां भी गवाही नहीं सुनी जाएगी जब तक दावा ना आ जाए भाई। तो कहते हैं वल इत्कुल मुबहम ला यूजिबु तहरीम अल फर्ज इंदहू, और मुबहम आजादी जो है वो तहरीम फर्ज को साबित नहीं करता इमाम साहिब के नजदीक, अला मा ज़करनाह, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी, फसारक शहादती अला इत्क अहदिल अब्दैनी, तो ये इसी तरह हो गया जैसे दो गुलामों में से एक की आजादी पर गवाही हो। वहादा कुल्लुहू इदा शहीदा फी सिहतिही, और ये सारा कहते हैं उस सूरत में है जब उन्होंने गवाही दी हो, फी सेहत ही आका की सेहत की हालत में, अला अन्नहु आतक अहद अब्दैही, इस बात पर कि इसने अपने दो गुलामों में से को आजाद किया है। कहते हैं ये सारी सूरत मसला उस वक्त है जब आका ने सेहत की हालत में एक गैर मुअय्यन बांदी या गैर मुअय्यन गुलाम को आजाद किया हो, और अगर आका ने मरजुल मौत में ऐसा किया है तो वो अब आगे बयान करेंगे, उसका हुक्म वसीयत वाला है, और जब वसीयत वाला है तो उसमें इस्तेहसानन गवाही को सुना जाएगा भाई। तो कहते हैं अम्मा इदा शहीदा अन्नहु आतका अहदा अब्दैही फी मरज़ी मौतिही, और बाकी जब इन दो गवाहों ने गवाही दी कि आका ने अपने दो गुलामों में से एक को आजाद कर दिया है अपने मरजुल मौत में, और मरजुल मौत में एता क्या है, वसीयत। इसी तरह औ शहीदा अला तदबीर ही फे सेहती ही औ फी मरज ही, या उन दोनों ने गवाही दी इस आका के मुदब्बर बनाने पर, फी सेहती ही उसकी सेहत में, औ फी मरज ही या उसके मरजुल मौत में। अगर दो आदमियों ने गवाही दी, चाहे आका सेहत की हालत में है चाहे मरजुल मौत में है, क्या गवाही दी कि इसने अपने गुलाम को मुदब्बर बना दिया है, तवज्जो है, तो आपने पढ़ा है कि मुदब्बर जो है वो वसीयत के हुक्म में है, वो सुलू से माल में से आजाद होता है, तवज्जो है, तो लिहाजा ये भी वसीयत वाली सूरत है, तो इसके अंदर भी उनकी गवाही को सुना जाएगा। तो कहते हैं औ शहीदा अला तदबीर ही, या उन दोनों गवाहों ने गवाही दी अला तदबीर ही आका के मुदब्बर बनाने पर, कि इसने दो गुलामों में से एक गैर मुअय्यन को मुदब्बर बना दिया है, फी सेहत ही अपनी सेहत की हालत में, औ फी मरजी ही या मरजुल मौत में, व अदा उ शहादती फी मरजी मौत ही औ बादल वफाती, चाहे ये अदाए शहादत जो है उस आका के मरजुल मौत में हो या उसकी वफात के बाद हो, चाहे ये गवाही मरजुल मौत में दे रहे हैं कि इसने सेहत की हालत में अपने दो गुलामों में से एक को मुदब्बर बनाया था, या मरने के बाद यह गवाही दे रहे हैं, तो अब सुना जाएगा क्योंकि अब मुद्दाई मालूम है, क्योंकि वसीयत का मुद्दाई वो मैयत होती है। तो कहते हैं वह अदा उ शहादती फी मरजी मौती ही औ बादल वफाती, और इस शहादत की अदायगी जो है उस आका के मरजुल मौत में है या उसकी वफात के बाद है, तुकबल उस्तेहसानन, तो इस्तेहसानन इस गवाही को कबूल किया जाएगा। और कयास तो क्या तकाजा करता है, इस गवाही को कबूल ना किया जाए क्योंकि मुद्दाई मजहूल है भाई। तुकबल उस्तेहसानन, तो इस्तेहसानन इस गवाही को कबूल किया जाएगा, लिअन्न तदबीर हैसुमा वका वका वसीयतन, लिअन्न तदबीर हैसुमा वका, इसलिए क्योंकि तदबीर जहां भी वाके हो, वका वसीयतन, तो वो वसीयत होकर वाके होती है। तदबीर जहां भी वाके हो वो वसीयत होकर वाके होती है, चाहे सेहत की हालत में मुदब्बर बनाए चाहे मरजुल मौत में, मुदब्बर बनाना ये वसीयत की तरह ही है भाई। तो कहते हैं लिअन्न तदबीर हैसु मा वका, इसलिए क्योंकि मुदब्बर बनाना जहां भी वाके हो, चाहे सेहत में हो चाहे मरजुल मौत में हो, वका वसीयतन, तो ये तदबीर वसीयत होकर वाके होती है। वकदल इत्कु फी मरजिल मौत वसीयतन, और इसी तरह मरजुल मौत के अंदर आजादी जो है ये भी वसीयत है। वल खस्म फिल वसीयति इन्नमा हुवल मूसी, वल खस्म, खस्म स्वाद के साथ है, फरीक मुखालिफ को कहते हैं। वल खस्म फिल वसीयति, और वसीयत के अंदर फरीक मुखालिफ जो है, इन्नमा हुवल मूसी, वो वसीयत करने वाला है, यानी वो जो मैयत है वो खसम है यानी मुद्दाई है। वह हुआ मालूम, और वो मालूम है। वअन्हु खलफुन, और उस मूसी से यानी उस मैयत से खलीफा मौजूद है। वह हुवल वसीयु अविल वारिसु, और वो उसका वसी है, और अविल वारिसु या वारिस है। वली अन्नल इत्क फी मरजिल मौती, और नीज इसलिए क्योंकि आजादी जो मरजुल मौत में होती है, यशीउ बिल मौती, ये दूसरी वजह जिक्र कर रहे हैं इस्तेहसान की, दूसरी वजह, एक वजह क्या कि यहां मुद्दाई मालूम है और वो मैयत है, और दूसरी वजह कि मौत के बाद आजादी फैल जाती है। जब आजादी दोनों गुलामों में फैल गई तो दोनों मुद्दाई बन गए, जब दोनों मुद्दाई बन गए तो मुद्दाई मालूम हुआ। कहते हैं वली अन अल इत्क फी मरजिल मौती यशीउ बिल मौती, और इसलिए क्योंकि मरजुल मौत में जो आजादी है वो मौत की वजह से फैल जाती है। फी हिमा, उन दोनों गुलामों में, फसार कुल वाहिद मिनहुमा खस्मम मुतअय्यना, तो इन दोनों में से हर एक जो है वो मुतअय्यन फरीक मुखालिफ है, तो इन दोनों में से हर एक मुतअय्यन फरीक मुखालिफ है। वलव शहीदा बाद मौती ही अन्नहु काल फी सेहती ही, और ये तो वो सूरत थी कि जब वो गवाह, ये गवाही दे रहे हैं कि इसने मरजुल मौत में दो गुलामों में से गैर मुअय्यन को आजाद किया था, और अगर मौत के बाद दो गवाह ये गवाही दें कि इसने सेहत की हालत में इन दो गुलामों में से एक को आजाद किया था, दो गवाह गवाही दे रहे हैं उस शख्स के मरने के बाद कि इस शख्स ने अपनी सेहत की हालत में अपने दो गुलामों में से एक को आजाद किया था, तो क्या इस गवाही को सुना जाएगा? जिंदगी में तो नहीं सुना जा रहा था, क्या मौत के बाद अब सुना जाएगा? तो बास कहते हैं नहीं, ये जब सेहत की हालत में इसने गुलाम आजाद किए थे तो वो तो वसीयत के हुक्म में नहीं है, जब वसीयत के हुक्म में नहीं है तो इस गवाही को नहीं सुना जाएगा। और जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि मौत के बाद चूंकि आजादी फैल जाती है, इसने तो बयान नहीं किया तो मौत के बाद वो आजादी फैल गई, जब फैल गई तो अब मुद्दाई मालूम हो गए, दोनों गुलाम हैं, लिहाजा अब शहादत को सुना जाएगा। तो कहते हैं वलव शहीदा बाद मौती ही, और अगर उन दोनों गवाहों ने गवाही दी उस आका के मरने के बाद, क्या नहु काल फी सेहती ही, कि इस आका ने अपनी सेहत की हालत में कहा था, अहदुकुमा हुर्रुन, कि तुम दोनों में से एक आजाद है। कद कीला, तो तहकीक कहा गया है, यानी बाज़ फुकहा फरमाते हैं ला तुकबलू, इस गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। लिया नहु लई सभी वसीयतिन, क्योंकि ये वसीयत नहीं है भाई, जब ये वसीयत नहीं है तो यहां पर मुद्दाई मालूम नहीं, क्योंकि मैयत भी मुद्दाई नहीं बन सकती क्योंकि वसीयत नहीं है। तो कहते हैं लिया नहु लई सभी वसीयतिन, तो यहां गवाही को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि ये वसीयत नहीं है। वकीला, और कहा गया है तो कबलू, कि इस गवाही को कबूल किया जाएगा, लिशुयूई, उस आजादी के फैल जाने की वजह से भाई, या यूं तर्जमा कर लें लिशुयूई, मुश्तरका होने की वजह से, कि वह आजादी दोनों गुलामों की में मुश्तरका होगी, दोनों में तकसीम होगी। बाबुल हल्फ बिल इत्की, ये बाब है आजादी से मुताल्लिक कसम के बयान में, आजादी से मुताल्लिक कसम, हल्फ और हलिफ ये मस्दर है भाई, हलफा यहलिफ से, इसका माना है कसम उठाना, तो आप इसको बाबुल हल्फ बिल इत्क यूं भी पढ़ सकते हैं और बाबुल हलिफ बिल इत्क यूं भी पढ़ सकते हैं भाई। तो हल्फ का माना है कसम उठाना, और यहां मुराद तालीक है। मैंने आपको बतलाया था कि तालीक को भी फिका के अंदर कसम कहते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे कसम किसी चीज पर उभारने के लिए या किसी चीज से रोकने के लिए खाई जाती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए की जाती है। और नीज जैसे कसम खाने के बाद अब उससे रुजू नहीं हो सकता, इसी तरह तालीक करने के बाद भी अब वो लाजिम हो जाती है, उससे रुजू नहीं हो सकता। भाई तो कहते हैं बाबुल हल्फ बिल इत्क, ये बाब है आजादी से मुतालिक तालीक के बयान में। वमन काला इदा दखल तुद्दारा फकुल्लु ममलूकिन ली यौम इज़िन फहुवा हुर्रुन। सूरत है मसला ये, एक आदमी कहता है इजा दखल तुद्दारा कि जब मैं उस घर में दाखिल हूं तो फकुल्लु ममलूकिन ली यौम इज़िन, तो उस दिन मेरा जो भी ममलूक हो फहुवा हुर्रुन तो वह आजाद है। जब मैं उस घर में दाखिल हूं तो उस दिन मेरा जो भी ममलूक है वो आजाद है। तो इस सूरत में याद रखो जिस दिन वो उस घर के अंदर दाखिल होगा उस वक्त जो भी गुलाम उसका ममलूक हुआ वो आजाद हो जाएगा। लिहाजा अगर इस वक्त इसका कोई गुलाम नहीं, बाद में इसने गुलाम खरीद लिया और जब उस घर के अंदर गया तो ये नया खरीदे हुआ गुलाम इसका ममलूक मौजूद है तो ये आजाद हो जाएगा। और अगर इस वक्त भी एक गुलाम इसका मौजूद था और इसने एक और भी बाद में खरीद लिया और उस घर के अंदर जब गया ये दोनों गुलाम उस वक्त मौजूद हैं इसके, तो ये दोनों गुलाम आजाद हो जाएंगे। तो इसमें एतबार जो है उस घर में दाखिल होने का वक्त है, क्योंकि इसने खुद क्या कहा है फकुल्लु ममलूकिन ले यौम इज़िन, तो उस दिन जो भी मेरा ममलूक है यानी जिस दिन मैं उस घर में दाखिल होऊंगा वो आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा इदा दखल तू दारा कि जब मैं उस घर में दाखिल हूं फकुल्लु ममलूक इनली यौम इज़िन फहुवा हुर्रुन, तो उस दिन मेरा जो भी ममलूक है वो आजाद है। वलैस लहू ममलूकुन, और हाल यह है कि इसका कोई ममलूक नहीं है यानी जिस वक्त इसने तालीक की है कसम उठाई है उस वक्त इसका कोई गुलाम नहीं। फश्तरा ममलूकन, फिर इसने एक गुलाम खरीद लिया। सुम्मा दखला, फिर उस घर में दाखिल हुआ। आताका, तो यह नया खरीदा हुआ गुलाम आजाद हो जाएगा। लिअन्न क़ौलहु यौम इज़िन, इसलिए क्योंकि ये कहने वाले का ये जो कौल है यौम इज़िन, भाई यौम इज़िन असल में क्या है यौम इज कान कजा, इस ये आम ताबीर है, ये हर जगह चल जाएगी। यौम इज कान कजा यानी जिस दिन ऐसा हो, जिस दिन ऐसा हो, कान कजा ये हर जगह चल जाएगा। और अगर आप चाहें तो उसी फेल जो वहां जिक्र है उसको भी आप जिक्र कर सकते हैं, मसलन यौम इस कान कजा ने यूं कहें यौम इस दखल तु दारा, आका ने कहा है ना यौम इज, तो यौम इस कान कजा आप यूं भी कह सकते हैं, और यौम इस दखल तु दारा जिस दिन मैं उस घर में दाखिल हूं तो उस दिन जो भी मेरा ममलूक है वो आजाद है। तो गोया तकदीर कलाम यूं था यौम इस कान कजा, यह तकदीर कलाम यूं था यौम इस दखल तो दारा, फिर इस दखल तो दार को हजफ कर लिया गया और उसके इवज इज को तनवीन दे दी गई फयौम इज़िन। तो असल में क्या था यौम इज कान कजा या यौम इज दखल तो दार, फिर इस दखल तो दार या कान कजा को हजफ किया और उसके इवज इज को तनवीन दे दी तो यौम इज़िन हुआ। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्न क़ौलहु यौम इज़िन, इसलिए क्योंकि आका का कौल जो है यौम इज़िन तकदीरुहु, ये तकदीर इस कौल की ये है यौम इज दखल तु जब मैं उस घर में दाखिल हूं। इल्ला अन्नहु असक़तल फ़िअला, मगर यह कि आका ने फेल को गिरा दिया उसको हजफ कर दिया। वअव्वज़हु बित्तन्वीनी, और तनवीन को उसका इवज बना दिया। फकान अल मुअतबरु क़ियाम अल मिल्क वक़्त अद्दुखूल, तो मुअतबर जो है वो मिल्कियत का कायम होना है दुखूल के वक्त जी। उस घर में दाखिल होने के वक्त जो मिल्कियत मौजूद है उसका एतबार किया जाएगा, तो उस वक्त जो भी गुलाम उसके ममलूक हुए वो सब आजाद हो जाएंगे। وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبْدٌ, اور اسی طرح اگر اساقہ کی ملکیت میں اس دن جس دن اس نے قسم اٹھائی تھی, عَبْدٌ, اس وقت اس کی ملکیت میں ایک غلام تھا, فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ, تو یہ غلام اسی آقا کی ملکیت میں باقی رہا, حَتَّى دَخَلَ, یہاں تک کہ آقا اس گھر میں داخل ہو گیا, تو عَتَقَ, تو یہ غلام بھی آزاد ہو جائے گا. لِمَا قُلْ, نہ اس وجہ سے جو ہم نے کہا کہ دخول کے وقت ملکیت معتبر ہے اور دخول کے وقت تو یہ غلام بھی مملوک ہے, لہذا یہ آزاد ہو جائے گا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي يَمِينِهِ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَعْتِقْ, اور اگر آقا نے اپنی قسم کے اندر یومئذٍ کا لفظ نہیں کہا, لم يعتق, تو پھر اس صورت میں قسم کے بعد جو اس نے خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. اگر آقا نے یومئذٍ کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ یوں کہا کہ اذا دخلت الدار فكل مملوك لي فهو حر, فكل مملوك لي فهو حر, کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوں, فكل مملوك لي, تو میرا جو بھی مملوک ہے, فهو حر, تو وہ آزاد ہے. تو فكل مملوك لي یہ حال کے لیے ہے, میرا جو بھی مملوک ہے, یعنی اس وقت میرا جو بھی مملوک ہے, یعنی جس وقت میں قسم اٹھا رہا ہوں, اس وقت میرا جو بھی مملوک ہے جب میں اس گھر میں جاؤں تو وہ آزاد. تو اگر اس وقت آقا کو کوئی مملوک نہیں لیکن بعد میں ایک غلام خرید لیا اور پھر آقا اس گھر میں گیا, تو پھر یہ غلام آزاد نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جس وقت قسم کھائی تھی اس وقت یہ غلام اس کا مملوک نہیں تھا. بھائی تو کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي يَمِينِهِ يَوْمَئِذٍ, اور اگر آقا نے اپنی قسم کے اندر یومئذٍ کا لفظ نہیں کہا, لم يعتق, تو آزاد نہیں ہوگا. وہ غلام جس کو بعد میں خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. اور اگر قسم کے وقت ایک غلام آقا کی ملکیت میں موجود تھا اور اس گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی یہ غلام آقا کی ملکیت میں ہے, تو پھر یہ آزاد ہو جائے گا. تو لم يعتق سے مراد وہ غلام ہے جس کو آقا نے بعد میں خریدا ہے, قسم کے وقت وہ آقا کا مملوک نہیں تھا. تو کہتے ہیں لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي, اس لیے کیونکہ آقا کا قول جو ہے کل مملوک لی, للحال, یہ کس کے لیے ہے؟ حال. کل مملوک لی, اس کا کیا معنی ہے؟ میرا جو بھی مملوک ہے, یعنی فی الحال میرا جو بھی مملوک ہے, وہ اگر میں اس گھر میں گیا تو وہ آزاد ہے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي لِلْحَالِ, اس لیے کیونکہ آقا کا قول کل مَمْلُوكٍ لِي یہ حال کے لیے ہے, وَالْجَزَاءُ حُرِّيَّةُ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ, اور اس کی جزا جو ہے اس مملوک کی آزادی ہے فی الحال, کہ فی الحال ہی وہ کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے. إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الشَّرْطُ عَلَى الْجَزَاءِ, مگر یہ کہ جہاں جب شرط داخل ہو گئی جزا پر, آقا نے شرط بھی تو ذکر کی ہے, اذا دخلت الدار, جب میں اس گھر میں داخل ہوں, اگر یہ شرط نہ ہوتی تو اس وقت سارے غلام آزاد ہو جاتے جو بھی اس کے مملوک ہیں. کل مملوک لے فہوا حر, تو سارے مملوک غلاموں نے اسی وقت آزاد ہونا تھا, لیکن جب شرط آ گئی تو اب یہ اعتاق معلق ہو گیا. تو کہتے ہیں والجزاء حریت المملوک فی الحال, اور اس کی جزا جو ہے مملوک کی آزادی ہے فی الحال ہی, الا انہ لما دخل الشرط علی الجزاء, مگر یہ کہ جب جزا پر شرط داخل ہو گئی, تاخر الى وجود الشرط, تو جزا مؤخر ہو گئی شرط کے پائے جانے تک, فیعتق اذا بقي على ملكه الى وقت الدخول, تو پھر وہ غلام آزاد ہو جائے گا جب وہ اسی آقا کی ملکیت پر باقی رہا, الى وقت الدخول, داخل ہونے کے وقت تک. ولا يتناول من اشتراه بعد اليمين, اور یہ تعلیق جو ہے شامل نہیں ہے اس غلام کو جس کو یہ قسم کے بعد خریدے, کیونکہ کل مملوک لی یہ کس لیے آتا ہے؟ حال کے لیے, جو میرا مملوک ہے یعنی فی الحال, تو مستقبل والے غلام اس میں داخل نہیں ہوں گے. تو کہتے ہیں ولا يتناول من اشتراه بعد اليمين, تو یہ جو قسم ہے یہ شامل نہیں ہے ان غلاموں کو جن کو قسم کے بعد یہ خریدے. وَمَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ذَكَرٍ فَهُوَ حُرٌّ, صورت مسئلہ یہ, آقا نے کہا كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ذَكَرٍ فَهُوَ حُرٌّ, کہ میرا جو بھی مذکر مملوک ہے وہ آزاد ہے. اب اس آقا کی ایک باندی ہے اور وہ حاملہ ہے, اور اس نے بعد میں ایک لڑکے کو جنم دیا, तो क्या यह लड़का आजाद होगा, क्योंकि यह हमल तो उस वक्त मौजूद था या इसके होने का एहतमाल था। और आका ने भी क्या कहा है, मेरा जो भी मुजक्कर ममलूक है फिलहाल वो आजाद है। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि नहीं, ये हमल जो है ये आजाद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आका ने ममलूक का लफ्ज जिक्र किया और ममलूक से कामिल ममलूक मुराद लेंगे जो कामिल गुलाम है, और हमल जो है वो तो कामिल गुलाम और मुस्तकिल गुलाम नहीं, ये तो औरत के उज्व के दर्जे में है, ये तो औरत के उज्व के दर्जे में है। तो लिहाजा आका ने कामिल गुलाम कामिल जात की आजादी का इरादा किया है, किसी उज्व की आजादी का इरादा नहीं किया। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वमन काल, और जिस शख्स ने कहा कुल्लु ममलूकिन ली दकरिन, कि मेरा जो भी मुजक्कर ममलूक है, ममलूकिन यह है मौसूफ, ये जकरिन याद रखें यह सिफत है ममलूकिन की, और ममलूकिन मुजाफुन इलै है कुल्लुन के लिए और मजरूर है, तो इसकी सिफत जकरिन यह भी मजरूर है। तो कुल्लु ममलूकिन ली जकरिन फहुआ हुर्रुन। तो कहते हैं वमन काला, और जिस शख्स ने कहा कुल्लु ममलूकिन ली द करीन, कि मेरा जो भी मुजक्कर ममलूक है फहुआ हुर्रुन, तो वो आजाद है। वलहू जारियतुन हामिलुन, और हाल यह है कि आका की एक हामिला बांधी है, फवलदत ज़करन, तो उसने एक मुजक्कर बच्चे को जन्म दिया, लम यातिक, तो ये बच्चा आजाद नहीं होगा। वहादा इदा वलदत लिसित्तति अशहुरिन फसाइदन ज़ाहिरुन। अच्छा भाई, बांदी ने बच्चे को जन्म दिया है, तो ये जो बच्चे को बांदी ने जन्म दिया, ये उस कसम के 6 माह या ज्यादा गुजरने के बाद इसने बच्चे को जन्म दिया है, और ये तो इतनी मुद्दत है कि जिसके अंदर एक नया हमल करार पा सकता है और उसकी पैदाइश हो सकती है। तो लिहाजा अब ये बात कतई ना रही कि तालीक के वक्त भी यह हमल था या नहीं। आका ने जिस वक्त कसम उठाई उसके 6 माह या ज्यादा बाद बांदी ने बच्चे को जन्म दिया है, तो अब मालूम नहीं कि जिस वक्त आका ने कसम खाई उस वक्त यह हमल था या यह उसके बाद हमल ठहरा है। तो मालूम हुआ कसम के वक्त हमल का होना यकीनी नहीं, अलबत्ता एहतमाल है, एहतमाल है। तो इस सूरत में तो यह हमल आजाद नहीं, क्योंकि हमल का उस वक्त होना यकीनी नहीं। और अगर उस बांदी ने 6 माह से कम मुद्दत के अंदर बच्चे को जन्म दिया, तो अब यह बात यकीनी हो गई कि जिस वक्त आका कसम खा रहा है उस वक्त भी बांदी हामिला है, तो उस वक्त भी बांदी हामिला है, लेकिन फिर भी यह हमल आजाद नहीं होगा। वजह यह जो दलील मैंने जिक्र कर दी कि आका ने क्या कहा, कुल्लु ममलूकिन लीदा करिन, हार मेरा मुजक्कर ममलूक, तो आका ने ममलूक का लफ्ज मुतलक जिक्र किया है, और अलमुतलक इजा युतलक युराद बिहिल फर्दुल कामिल, उसके लिए फर्द कामिल का इरादा होता है जो कामिल ममलूक हो, और कामिल ममलूक तो मुस्तकिल गुलाम होता है, हमल तो मुस्तकिल कामिल गुलाम नहीं, वो तो औरत के लिए उज़्व के दर्जे में है। बात समझ में आ गई। कहते हैं वहादा इदा वलदत लिसित्तति अशहुरिन फसाइदन ज़ाहिरुन, तो ये जो आजाद न होना है जब बांदी 6 माह या इससे ज्यादा में बच्चे को जन्म दे, तो इस सूरत में ये आजाद न होना तो जाहिर है। लिअन्न लफ्ज लिल हाली, इसलिए क्योंकि ये जो लफ्ज है ये तो हाल के लिए है। हमने बता दिया आपको कुल्लु ममलूकिन ली, ये किस लिए आता है, हाल के लिए, कि मेरा जो भी इस वक्त ममलूक है। तो लिअन्न लफ्ज लिल हाली, इसलिए क्योंकि ये लफ्ज हाल के लिए है। वफी क़ियाम अल-हम्ल वक्त अल-यमीन इहतिमालुन, और हमल का मौजूद होना कसम के वक्त इहतिमालुन, ये तो एक इहतिमाल है यकीनी नहीं। तो कहते हैं वफी क़ियाम अल-हम्ल वक्त अल-यमीन इहतिमालुन, और कसम के वक्त हमल के कायम होना जो है ये तो एक एहतमाल है। लिवजूदी अकल मुद्दतिल हम्ल बादहू, इसलिए क्योंकि कसम के बाद भी हमल की अदना मुद्दत पाई जा रही है। वकदा इदा वलदत लि अकल मिन सित्तति अशहुरिन, और इसी तरह होगा मसला, यानी बच्चा आजाद नहीं होगा। इदा वलदत लि अकल मिन सित्तति अशहुरिन, जब बांदी ने बच्चे को 6 माह से पहले जन्म दिया। लिअन्न लफ्ज यतनावलुल ममलूक अल मुतलका, इसलिए क्योंकि ये लफ्ज जो है ये शामिल है मुतलक ममलूक को, اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, تو کہتے ہیں لان اللفظ یتناول المملوک المطلقہ, اس لیے کیونکہ یہ لفظ جو ہے مطلق مملوک کو شامل ہے یعنی کامل مملوک کو, والجنین مملوک طبعا للام لا مقصودا, اور جنین بھائی وہ جنین یعنی وہ جو حمل ہے حمل, اور حمل جو ہے توجہ ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنین کہتے ہیں, تو کہتے ہیں والجنین مملوک تبعا للامی, اور جنین جو ہے وہ تو ماں کے تابع ہو کر مملوک ہے, مستقل مملوک نہیں, وہ ماں کے تابع ہو کر مملوک ہے, لا مقصودن مقصودن وہ مملوک نہیں. پھر دیکھ لیجئے ترجمہ, کہتے ہیں ول جنین مملوک طبعا للام لا مقصودا, اور یہ جو حمل ہے یہ تو ماں کے تابع ہو کر مملوک ہے, مقصود ہو کر مملوک نہیں ہے. تو یہ مقصود ہو کر مملوک نہیں ہے, چنانچہ اسی لیے کفارے کے اندر اس کو آزاد کیا جائے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. اگر یہ مستقل مملوک ہوتا تو حمل کی آزادی کے ذریعے بھی کفارہ ادا ہونا چاہیے تھا. بات سمجھ میں آ گئی, تو یہ مقصود ہو کر مملوک نہیں ہے بلکہ تابع ہو کر مملوک ہے. وَلِأَنَّهُ عُزْوٌ مِّن وَجْهٍ, اور اس لیے کیونکہ یہ جو حمل ہے یہ تو بعض اعتبار سے عضو ہے, اس عورت کا عضو ہے. وَاسْمُ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوُلُ الْأَنفُسَ دُونَ الْأَعْضَاءِ, اور مملوک کا اسم یہ تو شامل ہے ذات کو, دون الْأَعْضَاءِ نہ کہ اعضاء کو. مملوک کا لفظ ذاتوں کو شامل ہے اعضاء کو شامل نہیں. تو کہتے ہیں وسم المملوک یتناول الانفس دون الاعضاء, اور مملوک کا اسم جو ہے وہ ذاتوں کو شامل ہے نہ کہ اعضاء کو. ولہذا لا یملک بیعہ منفردا, اور اسی لیے آقا مالک نہیں ہے اس کی علیحدہ بیع کا. آقا صرف حمل کو بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا, بات سمجھ میں آ گئی, کیونکہ آقا اس کے سپرد کرنے پر قادر نہیں, معلوم ہو وہ مستقل مملوک نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولہذا لا یملک بیعہ منفردا, اور اسی لیے آقا اکیلے حمل کی بیع کا مالک نہیں ہے. قال العبد الضعیف, اس عبد الضعیف سے مراد صاحب ہدایا ہیں. قال العبد الضعیف, اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے. وفائدۃ التقیید بوصف الذکورۃ, اور مذکر ہونے کے وصف کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ, بھئی متن میں قید آئی تھی کل مملوکین لی ذکرین, یہ مذکر کی قید آئی تھی, صاحب ہدایہ اس قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ اگر یہ قید نہ ہوتی تو پھر باندی نے بھی آزاد ہو جانا تھا, اور جب باندی نے آزاد ہونا تھا تو اس کے تابع ہو کر حمل نے بھی آزاد ہو جانا تھا. تو کہتے ہیں وفائدت التقیید بوصف الذکورتی, اور مذکر ہونے کے وصف کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ لو قال, کہ اگر آقا یہ کہتا کل مملوکن لی, یعنی ذکر ان کا لفظ ذکر نہ کرتا, اگر آقا یہ کہتا تو تدخل الحامل, تو حاملہ باندی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتی, وہ بھی آزاد ہو جاتی. فیدخل الحمل طبعا لہا, تو حمل بھی اس باندی کے تابع ہو کر اس میں داخل ہو جاتا اور آزاد ہو جاتا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی, حل ہو گیا. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.